रात की क्लास चल रहा था 21/9/1967 पहले पेज के मध्यांश में बात चल रही थी कि जो दुनिया में अपन को वैष्णव कहते हैं उनको बताना है कि वैष्णव तो उन्हें कहा जाता है जो विष्णु को फॉलो करते हैं, जैसे जैन उन्हें कहा जाता है जो जिन को फॉलो करते हैं, ब्राह्मण उन्हें कहा जाता है जो ब्रह्मा को फॉलो करते हैं, और शैव उन्हें कहा जाता है जो शिव को फॉलो करते हैं, शिव को पहचानेंगे, शिव के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो फॉलो करेंगे। तो जो सच्चे वैष्णव पक्के पक्के हैं, विष्णु की औलाद कहो, विष्णु के पक्के फॉलोअर कहो, वो तो विषय सागर में गोते नहीं खाते हैं। जो विषय है वो तो बता दिया ना, किसे कहा जाता है, ऐसे नहीं कि कोई सांप का विष पीने कोई विष कहा जाता है। हाँ, विचार है ना, काम विकार वो तो ठीक है, सारी दुनिया काम विकार में आ सकते हैं, काम विकार अलग बात, लेकिन विचार का मतलब यह पराई स्त्री और पर पुरुष से इंद्रियों का सुख लेना, उसको कहा जाता है विविचार। और ये विविचार देवताओं में नहीं होता। कल भी बताया था कि राधा की दृष्टि कृष्ण में डूबती है, कृष्ण की दृष्टि राधा में, माने ज्ञान इंद्रियों से भी विविचार नहीं करते हैं वो। और ये तो दुनिया रजो प्रधान दुनिया है द्वापर युग से, और रजो प्रधान दुनिया में तो रज वृत्ति शुरू हो जाती है कन्याओं माताओं में, और शुरू करने के निमित्त तो दुर्योधन तो शासन ही बनते हैं। क्योंकि इस दुनिया में तो सब पुरुष इन विधर्मी धर्म पिताओं के आने से, उनसे प्रभावित होने से, सारे पुरुष मात्र दुष्ट युद्ध करने वाले बन गए हैं। दुष्ट युद्ध करना माना दुशासन बनना। कन्याओं माताओं के साथ तो खास दुष्ट युद्ध करते हैं, और फिर जब उनकी नहीं चलती है वो ऐसी होती है सीता की तरह कि रावण 20 बार भी प्रयत्न करे लेकिन सीता उनके कंट्रोल में नहीं आती है। तो जब देखते हैं कि कुछ नहीं चलती है तो फिर भी विचार में घुस पड़ते, तो उसको कहा जाता है विषय सागर, विषयस वैश्य। तो देवताएं थे वास्तव में इनको कहें वो हिंसक नहीं थे। वो विषय सागर में गोते नहीं खाते थे, अर्थात विशेष नहीं बनते, वॉइसलेस हैं, अर्थात विकारी नहीं बनते हैं, क्योंकि उनको तो जो दृष्ट इंद्रियां हैं उनसे आचरण ही नहीं करना होता है, तो उनको वैष्णव कहा जाता है। और उन विष्णु की और वैष्णव पंथियों की रचना किसने की, विष्णु किसने बनाया, जिसने बनाया वो स्वयं भी क्या हिंसक होगा, है दुष्ट युद्ध करने वाला होगा। दुष्ट युद्ध कहते हैं बाहुबल चलाना, दृष्ट इंद्रियों का उपयोग करना। तो ये वृत्ति इस दुनिया में विधर्मी धर्म पिताओं के आने से शुरू हुई है, 2500 साल से। उससे पहले 2500 साल जो रामकृष्ण की दुनिया थी सत्ययुग त्रेता में, वो दुनिया तो परमपिता परमात्मा शिव ने बनवाई थी, क्योंकि वो परमपिता परमात्मा शिव वो तो निराकारी स्टेज धारण करता है सदा काल की। और जब इस सृष्टि पर आता है तो निराकार वो ज्योति, जिसे कल बताया बिंदु, जैसे आत्माएं बिंदु होती हैं, ऐसे ही आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल परमपिता भी बिंदु, बिंदु की लंबाई चौड़ाई नहीं होती, इसलिए उसको निराकार कहा जाता है। इतना सूक्ष्म हो सकता है कि इन आंखों से तो क्या, जो विज्ञान के यंत्र हैं उनसे भी पकड़ में नहीं आती। तो वो जो शिव निराकार है, जो इस सृष्टि पर जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, वो इस सृष्टि पर आकर के उसको तो जन्म मरण के चक्र में न आने से तीनों कालों का ज्ञान है ना, तो वो इस सृष्टि रूपी चक्र में सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग का जो चार औरों का चक्र है, इसकी सारी गहराई को जानता है। उसके अनुसार उसमें जो अकूट ज्ञान का भंडार है, वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर के इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल पार्ट बजाने वाली आत्मा, जिसे आदम एडम या शंकर कहा जाता है, जिसका नाम महाभारत में अर्जुन भी रख दिया है, है अर्जन करने वाला। क्या अर्जन करने वाला है? धन संपत्ति स्थूल नहीं है, जो ईश्वरीय ज्ञान की संपत्ति है वो अर्जन करने वाला। उस ईश्वरीय ज्ञान संपत्ति के आधार पर वो योग बल की पावर प्राप्त करता है। कौन? एक अक्षर आदम, आदिदेव। और वो जो योग बल की प्राप्ति होती है शिव बाप से, योग लगाने से, याद करने से, क्योंकि वही एक आदि पुरुष है जो इस सृष्टि का रंगमंच का हीरो पाठधारी है, तो वो शिव के ज्ञान को अच्छी तरह से पूरा समझ जाता है और समझ करके जिस शिव को आज तक कोई नहीं जान पाया, भले मंदिरों में जाके शिव की पूजा करते हैं, उनसे पूछा जाए ये शिव कौन है, क्यों पूजा करते हो, ये तो पत्थर रखा हुआ है, तो कहते हैं भगवान है। अरे भगवान एक होता है, गॉड इज वन, राम भी भगवान, फिर कृष्ण भी भगवान, फिर गणेश भी भगवान, फिर हनुमान भी भगवान, फिर देवियां भी भगवान, फिर व्यास भी भगवान, अरे ढेर सारे भगवान। तो फिर बात बताते हैं, हाँ भगवान तो सर्वव्यापी है। अरे अरे भगवान जब सर्वव्यापी होगा तो तुम याद किसको करोगे, एक व्यापी होगा है, ऊंचे ते ऊंचे एक होगा, सच रूपी रंगमंच पर पाठ बजाने वाला, तो उसे तो याद किया जा सकता है, अनेकों को कैसे याद करोगे, बुद्धि भ्रमित नहीं हो जाएगी है, बुद्धि चलायमान हो जाएगी ना, एकाग्र तो नहीं होगी। तो बताया कि वो शिव जो प्रवेश करने योग्य है, जैसे भूत प्रेत प्रवेश कर जाते हैं तो वो क्यों नहीं प्रवेश कर सकता, भूत प्रेतों को सूक्ष्म शरीर है, लेकिन उसको तो सूक्ष्म शरीर भी नहीं है, क्या तीन प्रकार के शरीर होते हैं आत्मा को, एक ये स्थूल शरीर जो आंखों से देखने में आता है, दूसरा भूत प्रेतों का वो शरीर जो सूक्ष्म होता है लाइट का, और तीसरा वो शरीर है जो हर आत्मा निराकारी स्टेज को धारण कर लेती है, एकदम ज्योति बिंदु बन जाती है और निराकारी लोक में जाकर के आराम करती है। जैसे आदमी सारा दिन काम करके थक जाता है ना, तो थकता कौन है, शरीर की आत्मा, आत्मा सकती है। तो ऐसे ही सच्ची रूपी रंगमंच पर चार युगों में पार्ट बजाते बजाते कोई भी आत्मा, चाहे कम पार्ट बजाया हो, दो युगों का पार्ट बजाया, एक युग का पार्ट बजाया हो, एक जन्म का पार्ट बजाया हो, थक जाती है तो उसे रेस्ट चाहिए। तो वो रेस्ट देने के लिए, मुक्ति देने के लिए संसार से उस परम पिता परमात्मा शिव को, जो त्रिकालदर्शी है, तीनों काल का ज्ञाता है, उसे आना पड़ता है। वो आकर के बताता है कि तुम अपन को पहले पहले ज्योति बिंदु आत्मा समझो, ज्योति बिंदु आत्मा पक्का करेंगे तो तुम्हें जो आत्माओं का बाप है वो भी स्थिरता पूर्वक याद आएगा, और अपनी आत्मा के स्वरूप में ही स्थिर होने की प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, क्या 10 सेकंड, 20 सेकंड, 60 सेकंड, 2 मिनट, आधा घंटा, या कोई ज्यादा पावरफुल आत्मा है तो लगातार भी करेगा, कहेगा कि नहीं। तो बताया कि जो लगातार करेगा तो वो तो बाप समान ज्योति बिंदु पहले बना ना, और पहले बना तो बाप के नजदीक पहुंचा या दूर रहा, सुप्रीम सोल बाप के नजदीक पहुंचा, तो जो नजदीक पहुंचेगा वो कुछ प्राप्ति ज्यादा करेगा या कम करेगा, ज्यादा प्राप्ति करेगा। तो वो जो इस सच्ची रूपी रंगमंच का हीरो पाठधारी कौन है, अभी बताया आदम, एडम, आदिदेव है, जैन लोग कहते हैं आदिनाथ, तो वो शिव बाप समान स्टेज धारण करता है। जिसको याद करेंगे वैसे ही बनेंगे। चोर डकैतों को कोई संग करेगा याद करेगा तो चोर डकैत बनेगा, चोर डकैती के गुण आएंगे, आएंगे कि नहीं। हाँ, आज की भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट है, भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट के कायदे कानूनों को जाने वाला कोई बड़ा वकील होगा छोटा वकील होगा, उन वकीलों के संसर्ग में संपर्क में कोई आत्मा ज्यादा आएगी तो भ्रष्टाचारी कानूनों का जो ज्ञाता बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। हाँ, अब ईश्वरीय कायदे कानून अलग होंगे है? और ये भ्रष्टाचारी जो जो प्रजातंत्र सरकार है जो कि भगवान ने तो नहीं बनाई, भगवान ने राजाओं की सरकार बनाई थी या प्रजा की सरकार बनाई थी है? प्रजा में थर्ड क्लास लोग होते हैं, फोर्थ क्लास लोग होते हैं, सेकंड क्लास प्रजा होती है, फर्स्ट क्लास प्रजा भी सब नहीं होती, सब होते हैं है? प्रजा में सबकी बुद्धि एक जैसी होती है नहीं? देखो आज की दुनिया में टाटा है, बिरला है, डालमिया है, और ये कौन है अभी अभी आजकल ये क्या नाम बताया, अंबानी, अंबानी अंबानी है, इनको क्या बुद्धू कहेंगे है? बुद्धू नहीं कहेंगे ना। इसका मतलब ये है कि ये आत्माएं बुद्धि में आज की दुनिया में तीक्ष्ण है। क्या बुद्धि ज्यादा तीक्ष्ण होती है, विशाल बुद्धि होती है तो उसमें ज्यादा याददाश्त रहती है कि नहीं है? रहती है ना। अरे जैसे देवी देवता सनातन धर्म की आत्मा होगी पक्की, देवी देवता धर्म से जन्म लेती हुई आई होगी है ना, तो वो तो तामसी बन गई। दुनिया की हर चीज चार अवस्थाओं से गुजरती है ना, सतो प्रधान, रजो प्रधान, फिर तमो प्रधान, सत रज तम, इन तीन गुणों से ये दुनिया पसार जरूर होती है। तो हर धर्म की आत्माएं चार अवस्थाओं से पसार होती है, तो देवी देवता सनातन धर्म की भी कोई आत्मा ऐसी होगी ना जो अंतिम जन्मों में आके जन्म लेती होगी, होगी कि नहीं। तो अंतिम जन्मों में आके अगर देवी देवता सनातन धर्म की आत्मा भी जन्म लेगी तो वो देवी देवता सनातन धर्म के सिद्धांतों को लागू करेगी, जानेगी ना ज्यादा है, और ज्यादा बुद्धिमान होगी तो दूसरों से अपने धारणाओं को टैली भी करेगी। जैसे राजीव दीक्षित है, उसको बुद्धिमान कहेंगे तो बुद्धू कहेंगे है? इतनी याददाश्त है, जो पुराने ऋषि मुनि हुए हैं उन आत्माओं को होगी, या जो देवी देवता पक्के बने विष्णु कुल के कहो, या सतयुग आदि में जो सोलह कला संपूर्ण नारायण बने वो आत्माएं कहो, तो वो आत्माएं उतनी क्षिप्र बुद्धि हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि पुरानी हो गई। तो बताया कि जो पक्के वैष्णव होंगे वो अभी इस दुनिया में नहीं होंगे, पक्के तो नहीं होंगे। क्यों? कि संघ के रंग में आते आते ये भारतवासी तो खास मात्र देश है ना, एक यही देश ऐसा है जहां के भारतवासी दूसरों के संसर्ग संपर्क में धर्मों के आते आते उनके प्रभाव से प्रभावित हो जाए। क्या मातृ देश माने? माताओं का देश। माताओं का देश माने क्यों है माताओं का देश? क्योंकि माताओं कन्याओं में पवित्रता का गुण जास्ती होता है। तो ऐसी आत्माएं जो भारतवासी हैं, वो भारतवासी 33 करोड़ आत्माएं जो सच के आदि से लेकर सतयुग आदि से लेकर के कलयुग के अंत तक वो सप्तधाम कहो परम धाम कहो जहां आत्माएं रेस्ट लेती हैं। क्या इस सृष्टि में जब बहुत थक जाती है, पार्ट बजाते बजाते, तो ये ड्रामा प्लान अनुसार ये ड्रामा पूरा कहा जाता है। ऐसे तो ड्रामा कभी पूरा नहीं होता, ये तो गोल चक्कर है, घूमता ही रहता है। लेकिन ऐसी एक स्टेज आती है जब सब इस सृष्टि की रंगमंच की मनुष्य आत्माएं थक जाती है और सब ओ गॉड फादर को याद जरूर करती। हाँ, कोई पहले कोई बाद में। तो जब सब थक जाती हैं, तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर खेल खलास होता है, जलमयी हो जाती है। क्या एटम बम्ब फटते हैं और सारी दुनिया, ये दुनिया भी खलास होती है और ऐसे एटम बम्ब पावरफुल बने हुए हैं जो जहां तक वायुमंडल फैला हुआ है और वायुमंडल के ऊपर भी जहां तक मनुष्यों की बनाई हुई ये जो यंत्र हैं। क्या क्या यंत्रों का नाम है जो दूसरे दूसरे ग्रहों उपग्रहों पर भेजे जा रहे हैं? हाँ, सैटेलाइट आदि। तो जहां तक ये पहुंच है वहां तक मार करने वाले एटमिक एनर्जी मिसाइल्स तैयार करने में लगे हुए हैं। तो जब वो विस्फोट होंगे और सभी देश, ढेर सारे देशों के पास, कोई के पास चोरी छुपे हैं, कोई के पास खुले हैं, पावरफुल है जैसे अमेरिका सबके ऊपर धौंस जमाता है, तो वो खुलेआम बनाता है, कोई नहीं रोक पाता। तो बताया जब वो फटते हैं ना इकट्ठे इकट्ठे, जैसे यादगार दीपावली है, तो दीपावली में बहुत से घर घर में दीपक जग जाते हैं, तो ये आत्मा रूपी दीपक जब भगवान के इस सृष्टि पर आने से सबके दीपक जग जाते हैं, तो इस सृष्टि पर जलमयी हो जाती। क्यों होती है? क्योंकि वो एटम बम फटते हैं और पृथ्वी के नॉर्थ पोल साउथ पोल के जो मीलों ऊंचे बर्फ के पहाड़ हैं वो दरक करके समंदर में आ जाते हैं, तो इस तरह ऊंचा उठेगा ना। हाँ, और एटम बम फटेंगे तो उनकी गर्मी से समुन्दर का जल बॉइल्ड वाटर बन जाता है। बनेगा कि नहीं? जो एटमिक एनर्जी दूसरे ग्रहों उपग्रहों तक भी मार कर सकती है, वो एटमिक एनर्जी क्या यहाँ के सागर के जल स्तर को खूब नहीं सुखाएगी? लेकिन सागर तो अगाध है, अगाध है, उसकी किसी ने था ले पाई आज तक? ले पाई नहीं। सागर की था आज तक किसी ने नहीं ले पाई। अगर ले पाई होती तो आज के वैज्ञानिक बड़मूला ट्रेंगल के क्रास कर देते। कर लिया? कर लिया? नहीं कर पाया। तो बताया कि ये जो जलमयी होती है उसका कारण समझ गए है? और जब एटमॉस्फेयर टूटता है, ओजोन किरण जिसे कहते हैं फटती है, सूर्य की ओजोन किरणें जब पृथ्वी पर आती हैं, वो वायुमंडल फटने से तो और ज्यादा सूर्य की गर्मी बढ़ जाती है, तो ये समंदर का पानी जोर से खोलता है और बादल, ढेर सारे बादल ही बादल तैयार हो जाते हैं और जोर से बरसते हैं, और सागर भी बढ़ेगा ऊंचाई में या घटेगा? बढ़ेगा। इधर बरसात होती है तो बरसात
सागर को तो प्रभावित नहीं करेगी उतना, किसको प्रभावित करेगी? कॉन्टिनेंट्स क्या कहते हैं वो, महाद्वीप, महाद्वीप, हाँ महाद्वीपों में जहां पृथ्वी है, पृथ्वी को प्रभावित करेगी, करेगी ना। ज्यादा बरसात हो जाती है गांव देहात में तो गांव देहात डूबने लगते हैं कि नहीं? हाँ, तो वो जलमयी है, ऐसी जलमयी है जिसमें सारी पृथ्वी के जो भी महाद्वीप हैं सब डूबने। हाँ, एक पहाड़ है दुनिया में सबसे ऊंचा, क्या, कौन सा पहाड़? हिमालय पहाड़। उसमें भी एक चोटी है, क्या, एवरेस्ट चोटी, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। तो वहां तक मनुष्य पहुंच जाते हैं कि नहीं? हाँ। तो जलमयी जब होती है तो ज्यादा पावरफुल आत्माएं जो होती हैं वो तो फिर बहुत समय तक, क्योंकि वो तो डबल तारू होंगी, एक तो शरीर से तैरने वाली और दूसरे आत्मा से भी तैरने वाली। ऐसी आत्मा उनकी तैरने वाली बन जाती है कि विषय विकार में भी नहीं डूबती। क्या क्या कहा? विषय विकारी दुनिया के वालों के साथ रहने के बावजूद भी उनके विषय विकारी वातावरण में डूबती नहीं। समझा कि नहीं समझा? हाँ, जो यादगार बनी हुई है आज तक भी शिव के मंदिर में, और जिसकी पूजा होती है, और पूजा उसी की होती है जो इतना पवित्र हो, कि कीचड़ जैसी दुनिया में रहे जैसे सुअर रहता है, बैंसा रहता है, गेंडा रहता है, कीचड़ रहता है ना, कीचड़ में डूब मरता है क्या? नहीं डूब। तो ऐसे ही ये जो कुछ आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं, जो परमपिता परमात्मा शिव इस सृष्टि पर आकर के योग बल सिखाते हैं, उस योग बल की पावर में आज के साइंटिस्ट तो कुछ भी नहीं है उसकी टक्कर में। क्या कहा? हाँ, तो ऐसी पावर कुछ आत्माएं भरती हैं जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जलमयी होने के बावजूद भी लंबे समय तक जीवित रहेंगी या नहीं रहेंगी? हाँ, इस तरह जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वो पहाड़ों पर पहुंच जाएंगी, पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर पहुंच जाएंगी, एक से एक ऊंची चोटी, उन ऊंची चोटियों पर भी और स्तर बढ़ेगा। तो एक चोटी ऐसी है, जिसको कहा जाता है विष्णु की ब्राह्मण चोटी, क्योंकि ब्राह्मण बनने के बाद नीची स्टेज आती है तो क्या कहे जाते हैं? देवता। ब्राह्मण सबसे ऊंची स्टेज है क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण पैदा होते हैं, और जो ब्रह्मा है वो उसे कहा जाता है जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर शिव बाप के सिखाए हुए कायदे कानून को सबसे जानने वाला होता। तो एक होगा या नंबरवार भी होंगे? हाँ, नंबरवार होते हैं। अव्वल नंबर ब्रह्मा परम ब्रह्म कहा जाता है, जिसे कहते हैं आज भी शास्त्रों में तो यादगार है, क्या, गुरुरु ब्रह्मा, गुरुरु विष्णु, गुरुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरु विनो। तो इसका मतलब है कि शास्त्रों में तो और चित्रों में तो, क्योंकि चित्रकारी पहले हुई है अजंता एलोरा एलिफेंटा जो गुफाओं में, और बाद में उन चित्रों को देख करके शास्त्र बनाए,
तो शास्त्र में भी सच्चाई है कुछ न कुछ है, पूरी सच्चाई नहीं है, लेकिन जितना पुराना शास्त्र होगा उतना उसमें सच्चाई जास्ती। लेकिन लोग भूल रहे हैं कि पुराने से पुराना शास्त्र कौन सा हो सकता है। देखो जितने भी धर्म पिताएं इस दुनिया में आए हैं हिस्ट्री में, उन्होंने ओरली ज्ञान सुनाया है या लिखा पट्टी करके ज्ञान सुनाया है, या कागजों पे लिख करके या भोजपत्रों पे लिखा हुआ दिया क्या? नहीं, उन्होंने तो ओरली सुनाया ना। ऐसे ही वो सुप्रीम सोल गॉड फादर, हेवनली गॉड फादर जब इस सृष्टि पर आता है, क्या निराकार जो इन आंखों से नहीं देखा जा सकता है, ज्ञान से समझा जा सकता है, क्योंकि वो आदम में प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से। इसके अलावा और भी आत्माएं हैं क्या, जो ब्रह्मा को पांच मुख दिखाए जाते हैं ना, उनमें से चार मुख और भी हैं जो इस दुनिया में चारों तरफ देखते हैं लेकिन उस ऊपर वाले को नहीं देख पाते, माने ऊर्ध्वमुखी नहीं है अधोमुखी है, और उनमें भी नंबरवार क्या उत्तर साइड में तो कौन सा देवता गाया हुआ है? हाँ? अरे बताओ बताओ जल्दी बताओ, उत्तर साइड में कुबेर तक पहुंचे भगवान, कुबेर से ऊंचा कोई देवता ही नहीं नजर में आया। ईश्वर उत्तर साइड में तो हिमालय है, वहां कौन सा ईश्वर है? अरे शास्त्र में कोई प्रसिद्ध शंकर है, वो ईश्वर है कैलाश। अरे कौन रहता है वहां जो प्रसिद्ध है शास्त्रों में? देवता, देवता पूछा ना, कौन सा देवता? महादेव कहा जाता है, महादेव माने देवताओं में महान देव, जो गीता में कहा है। क्या जब मैं आता हूं ना, गीता तो एक ही ग्रंथ है ना गाया हुआ, गीता, बाकी कुरान, बाइबल है, धम्मपद है, सिखों का क्या है? गुरु ग्रंथ साहब, ये कोई भगवान ने गाए है? ये तो धर्म पिताओं ने सुनाया है मुख से, बाद में बीसियों सैकड़ों वर्ष के बाद है ना, और उसको लिखा गया। ऐसे ही भगवान भी इस सृष्टि पर आते हैं, सुप्रीम गॉड फादर, हेवनली गॉड फादर, तो वो मुख से सुनाते हैं, न कि लिखा पट्टी करते हैं या पढ़ के सुनाते हैं शास्त्रों को, नहीं, वो तो मुरली सुनाते हैं। मुरली कहा जाता है उसको, मुरली माने जिसके अर्थों को मनुष्यों ने अपने अपने स्वभाव संस्कार के अनुसार मोड़ लिया। क्या कहा? जैसे जैसे जिनमें स्वभाव संस्कार भरे हुए हैं वैसा वैसा वो पकड़ देता है और मोड़ देता है, और अपने फॉलोअर्स को, अपने जो अपनी बात मानने वाले हैं, उनको ऊपर गुरु बन के बैठ जाता है। तो ये होता रहा। वो भगवान जिसे कहा जाता है ईश्वर है, ईश्वर माने शासन करता ऊंचते ऊंच, वो इस सृष्टि पर आदम के द्वारा प्रवेश करके प्रत्यक्ष होता है और ज्ञान का भंडार देता है। पहले पहले तो गीता ही प्रसिद्ध है ना शास्त्र में, भगवान का सुनाया हुआ, डायरेक्ट सुनाया हुआ, मुकर्रर रथ से सुनाया हुआ, चारों मुखों से सुनाया हुआ नहीं, जो ब्रह्मा के अधोमुखी मुख है, ऊर्ध्वमुखी पांचवा मुख भी है, उस मुख से सुनाया हुआ ज्ञान सारी सृष्टि की मनुष्य आत्माएं आखिर तक समझ जरूर जाती है और समझने के बाद उसी परम ब्रह्म को याद करती है। परम ब्रह्म क्यों कहा, इस मनुष्य सृष्टि का पिता क्यों नहीं कहा? अरे सृष्टि रचने के लिए बाप की जरूरत होती है कि अम्मा की जरूरत होती है? किसकी जरूरत होती? माँ चाहिए ना। तो वो शिव सुप्रीम सोल जो परम पुरुष है, पुरुष माने आत्मा, आत्माओं में परम पार्टधारी है, वो इस सृष्टि पर आकर के उस आत्मा को खोज लेती है। कौन सी आत्मा? जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच की सबसे पावरफुल आत्मा भी है, हीरो पार्टधारी भी है और साथ साथ वो उसमें वो भी गुण है। दुनिया की जितनी भी माताएं हैं उन माताओं में सबसे जास्ती सहन शक्ति का भी गुण है। क्या अब सहन शक्ति का गुण होगा तो सहन करेगा, करेगा ना। अच्छा लेकिन सहन करने की भी एक सीमा होती है, होती है कि नहीं? इस दुनिया में जो रजो प्रधान तमो प्रधान आत्माएं इस सृष्टि पर आती हैं, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट वगैरह, ये तो हिंसक होती है और इनकी हिंसा बढ़ती ही जाती है या घटती जाती है? बढ़ती ही जाती है। तो उनकी हिंसा से भी टक्कर लेने वाला कोई इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर हीरो पार्टधारी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो वो ही हीरो पार्टधारी शंकर आदम एडम है, इस सृष्टि रूपी रंगमंच का आदि पुरुष, पुराण पुरुष। उस पुराण पुरुष के अंदर शिव की सोल, सुप्रीम सोल, हेवनली गॉडफादर प्रवेश करके वो तरीके, सिद्धांत, कानून, कायदे कानून सिखा देता है। क्या? कि तुमको पहले तो सहन शक्ति से काम लेना है। क्या पहले क्या करना है? माता बनना है, क्योंकि परिवार में जो बच्चे पैदा होते हैं प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं, तो जन्म लेते ही क्या उनके ऊपर कंट्रोल, कड़ा शासन करना चाहिए? है तो मर जाएं। है तूने मेरी आग में पेशाब क्यों कर दी, मेरे सर के ऊपर पेशाब क्यों कर दी? अरे वो समझेगा, सुनेगा? अरे वो तो बच्चा है, शिशु है। तो माँ चाहिए ना, माँ का प्यार चाहिए ना। क्षमा करेगी या कंट्रोल करेगी? क्षमा करेगी ना। तो ऐसे ही है, शिव बाप जिस मुकर्रर रथ में पहले पहले प्रवेश करते हैं ओरली ज्ञान सुनाने के लिए, तो ओरली जो ज्ञान सुनाया वो टाइम था जिसे ब्राह्मणों का आदि का टाइम कहेंगे। कौन सा आदि का टाइम? ओम मंडले आ ऊ म, तीन आत्माओं की मंडली में आता है। क्या? जैसे वो संगीत की मंडली होती है ना, कोई तबला बजाता है, है? कोई हारमोनियम बजाता है, कोई मजीरा बजाता है, तीनों मिलकर के और बस मंडली बन गई, बन गई नहीं। ऐसे ही शिव बाप, सुप्रीम सोल, हेवनली गॉड फादर जिस तन में प्रवेश करते हैं, है? उस तन के साथ साथ दो आत्माएं और भी होती है, मनुष्य आत्माएं। उन मनुष्य आत्माओं की मौजूदगी में शिव बाप उस मुकर्रर रथ के द्वारा ओरली गीता ज्ञान सुनाते हैं। इसलिए कहा जाता है श्रीमत् श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत। क्या भ्रष्ट मत नाम नहीं दिया, कैसा नाम? श्रीमत
भगवत,
माने भगवान की सुनाई हुई।
भगवान नाम क्यों दिया है? भगवान नाम तो या तो वो भाग्यशाली,
तो कौन सी आत्मा को कहेंगे भाग्यशाली? इस संसार रूपी रंगमंच पर जो भी आत्माएं पार्ट बजाने वाली हैं, ऊंच से ऊंच आत्मा से लेकर के नीच से नीच पार्ट बजाने वाली आत्माओं में भगवान किसको कहेंगे? भग से भाग्य बनता है, वो खर्रा वो आत्मा है पार्ट बजाती, उससे ऊंचा पार्ट कोई नहीं बजाती। हरे सैकड़ों शिव बाबा, अच्छा अच्छा काट दिया, शिव बाबा जिसके पास सबसे ज्यादा कन्याएं माताएं हों कंट्रोल में है। अच्छा तो कन्या माता से शरीरधारी होती है ना? अब शरीरधारियों में कहें तो शिव तो मुकर्रर रूप से कोई एक ही चोले में आएगा ना, एक के द्वारा गीता ज्ञान सुनाएगा ना कि दो के द्वारा सुनाएगा? एक के द्वारा गीता ज्ञान सुनाएगा। जो दुनिया में सब धर्म के लोग इस गीता ज्ञान का लोहा मानते हैं, हर धर्म में गीता का अनुवाद किया, लेकिन वो बेचारे ये नहीं जानते ये जो गीता हमारे हाथ लग रही है कागज पे लिखी हुई, ये मनुष्यों की लिखी हुई है। क्या भगवान की ओरली सुनाई हुई गीता नहीं है? नहीं। तो वो जो भगवान ने आदम के तन में, आदम शंकर के तन में प्रवेश करके गीता ज्ञान सुनाया था, वो ओरली सुनाया था, और वो ही ओरली गीता ज्ञान ओम मंडली में परमपिता परमात्मा शिव सुनाया जा? और उस समय जब सुनाया तो पहले पहले कौन आत्माएं उनके सामने थी? कितनी थी? अरे कुछ पता नहीं, गोइंती। इसीलिए तीन आत्माएं विशेष ऊंच से ऊंच देवताएं गाए हुए हैं, जिनकी कहते हैं त्रिनाभ, क्या त्रिमूर्ति, तीन मूर्तियां, क्योंकि शिव को तो अपनी मूर्ति है ही नहीं। तो इस दुनिया में जिसको जिनको जिनको मूर्तियां हैं देवताओं की, दिखाते हैं ना, ये सारे देवताओं की मूर्तियां अलग अलग तरीके से दिखाते हैं, उनमें अलग अलग पहचान होती है, होती कि नहीं? तो उन मूर्तियों में जो सबसे जास्ती नजदीक मूर्ति है वो कौन सी है जो शिव के साथ दिखाई जाती है? अरे जल्दी एक अक्षर नहीं लिख सकते? शंकर। तो जो शंकर की मूर्ति है जिसको लोगों ने न समझने के कारण शिव शंकर एक समझ लिया है। अरे इतनी भी बुद्धि नहीं चलती कि शंकर का विग्रह पूजा जाता है, मूर्ति पूजी जाती है, मूर्तिमान है, और शिव का लिंग पूजा जाता है। क्या शिव का कोई अंग नहीं पूजा जाता? नाक पूजी जाती है क्या? कान बता दिखा के पूजा जाता है क्या? नहीं। पूरा मुख पूजा जाता है? नहीं। हाँ, शिव जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं उसका एक अंग भी है जो इस संसार में इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जब दुनिया बहुत तमोप्रधान बन जाती है, दुखदायी बन जाती है, सभी धर्म वाले तमोप्रधान बन जाते हैं, अति दुख देने वाले, तो उस दुनिया में कोई ऐसा भी मनुष्य होगा पावरफुल जिसकी इंद्रिय वो कर्मेंद्रिय जो बहुत दुख देने वाली साबित होती है इस संसार में, कामेंद्रिय, उस आत्मा को पकड़ता होगा क्या, जिसका नाम शास्त्रों में दिया हुआ प्रद्युम्न, क्या, और उसके बच्चे का नाम दिया है अनिरुद्ध, आ माने नहीं निरुद्ध माने जिसको रोका जाए, रोध कर दिया जाए, निरुद्ध, रोध करना निशेष है उसको इस दुनिया की कोई भी मनुष्य आत्मा है, मनुष्य आत्मा ही सबसे ऊंची होती है इस दुनिया में पावरफुल, कोई भी उसको रोक नहीं सकती, किसको, अनिरुद्ध है काम विकार को, काम विकार जब फोर्स मारता है ना उसका अंग है ना काम इंद्रिय, तो कोई रोक ही नहीं पाता, तो वो काम विकार के ऊपर विजय पाना सुप्रीम सोल बाप हेवनली गॉड फादर जिस तन में प्रवेश करते हैं, जिसका शास्त्र में गायन भी है, जिसने कामदेव को बस किया, अब लोगों ने समझा कि कामदेव कोई देवता होगा, हाँ देवता भी है, क्या कौन सा देवता है, वही जिसका नाम रख दिया अनिरुद्ध, उसकी संगिनी जीवन संगिनी उषा, उसे अनिरुद्ध कह दो चाहे सूर्य कह दो, चाहे सूर्य के आगे आगे प्रत्यक्ष होने वाली उषा कह दो कि नहीं, कह दो कि नहीं, हाँ लेकिन लोगों ने उषा और सूर्य समझ लिया वो जड़ को, जैसे जड़ आसमान में सितारे हैं ना, जड़ आसमान में चंद्रमा है ना, नक्षत्र है ना, सूर्य है ना, ये जड़ है या इनमें बुद्धि है, ये तो जड़ है ना, तो जड़ में ज्यादा ताकत होती है कि चैतन्य में ज्यादा ताकत होती है, चैतन्य में ज्यादा ताकत होती है, तो वो सूरज चांद सितारे जो हैं वो जड़ हैं, हैं ये मानिंद हैं चैतन्य ज्ञान सितारों के, उनसे मिसाल दिया जा सकता है कि इस सृष्टि पर ज्ञान सूर्य कौन है, जिसका नाम गीता में कहा कि मैं जब आता हूं तो सूर्य को ज्ञान देता हूं, विवस्वत नाम दिया, क्या विवस्वान, तो वो विवस्वत, वो अनिरुद्ध, क्या वो सूर्य, वो शंकर, वो आदम, वो एडम, कोई दूसरा नहीं है, वो वही व्यक्तित्व है इस दुनिया का जो सबसे पुराना मनुष्य है, शास्त्र में पुराण पुरुष कह दिया है, विष्णु का नाम दिया है पुराण पुरुष, लेकिन इसमें भी घपला कर दिया उन्होंने, शास्त्रकारों ने विष्णु समझ लिया सोलह कला संपूर्ण नारायण नारायणी को, उनके कंबाइंड रूप को, स्त्री पुरुष के कंबाइंड रूप को विष्णु समझ लिया, दो हाथ नारायण के, दो हाथ लक्ष्मी के, और उनके स्वभाव संस्कार मिलके एक हो गए, तो उनको समझ लिया ये विष्णु है। अरे भाई एक तरफ तुम कहते हो भगवान आता है तो नर अर्जुन को नारायण जैसा सोलह कला संपूर्ण देवता बनाता है, तो ऊंचा कौन हुआ, बनाने वाला या बनने वाला, है? अच्छा, और जो बनाने वाला बना रहेगा तो वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर रहेगा, वो तो रहता ही नहीं, वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच का
एमडी समझ लो, जैसे आज की दुनिया में डायरेक्टर होता है, फिर मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, है? तो कारखाने में ज्यादा टाइम कौन देता है?
लिखो एक अक्षर लिखो, डायरेक्टर की मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर ज्यादा टाइम, और एक डायरेक्टर नहीं होता है, हाँ
असिस्टेंट डायरेक्टर, उसके और नीचे
है ओ, क्या कहते हैं उसको
ज्वाइंट,
ज्वाइंट ज्वाइंट कहते हैं,
हाँ जूनियर डायरेक्टर, जूनियर मैनेजर,
हाँ तो ऐसे ऐसे नाम दिए हैं ना, तो ऐसे ही ये चार ब्रह्मा हैं, जिनमें वो निराकार शिव प्रवेश करता है, वो चार ब्रह्मा जो चार भुजाओं के रूप में देखने में आते हैं। अब भुजाएं जड़ होती हैं कि अपने आप चलती हैं? है? उनको चलाने वाली चैतन्य आत्मा चाहिए ना, तो चैतन्य आत्मा भुजाओं से ऊपर बैठेगी, राजा ऊपर बैठेगा कंट्रोल करने वाला, कि नीचे बैठेगा? ऊपर बैठेगा। तो वो विष्णु को जो दिखाया जाता है ना चित्र, उसमें भ्रकुटि के मध्य में वो पांचवा ब्रह्मा बैठा हुआ है, परम ब्रह्म का भी पार्ट बजाने वाला। क्या? क्योंकि वो तो है तो एक ही व्यक्तित्व, शंकर कहो आदम कहो कि दो है, पुरुष है ना, शिव बाप सुप्रीम सोल पुरुष में आवेगा या स्त्री चोले में आवेगा? भाई स्त्री चोला तो उसका शरीर ही कोमल होता है
कि कठोर होता है,
हा?
और इस दुनिया में तो जो पुरुष हैं वो प्रबल है या स्त्री चोला वाले प्रबल है?
भले कहीं कहीं कोई कोई देश में बैठ जाते हैं शासन करने के लिए स्त्री चोला वाले भी,
क्या जैसे इंग्लैंड में महारानी विक्टोरिया
है ना,
और वो तो पहली थी,
क्या
उससे पहले तो कोई नारी नहीं थी?
महारानी विक्टोरिया जो पहली थी ना, उसने चला के दिखाया, जो पहला होगा वो तो
ज्यादा पावरफुल होगा ना,
फिर उसके बाद और भी तो आए होंगे, तो और जो आए फिर, अब नाम क्या है उनका? हाँ अरे लिखो भाई, लिख के बताओ है?
अरे वाह,
हाँ वो विक्टोरिया तो विक्टोरी की बात हुई, अरे इंग्लैंड में कौन बैठी हुई है अभी? तो पावरफुल देश इंग्लैंड है ना कि भारत है? अरे भारतवासी तो चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे कोई गांधी हो, हाँ एलिजाबेथ है ना, तो जो इंदिरा गांधी है वो तो भारत की,
कौन की? चाहे गांधी जी हो, चाहे उनका टाइटल लेने वाली इंदिरा गांधी जी हो,
टाइटल तो लिया ना, तो ये तो भारतवासी हुए नहीं कि विदेशी हुए? और ये जो ऊंची गद्दी लेते हैं, बड़ा मान मर्तबा लेते हैं अंत में, तो नई आत्माएं होती हैं या पुरानी आत्माएं देवी देवता सनातन धर्म की हैं? पुराने भारतवासी हैं कि नए हैं? नए हैं ना, तो ये तो नई आत्माएं ऊपर से उतरी हुई, कमजोर हैं पुराने वालों से जो सतयुग में सतयुग से जन्म लेते आए हैं, या कमजोर हैं? कमजोर है ना, तो वो क्या शासन चलाएंगे? भ्रष्टाचारी शासन चलाएंगे कि शिष्टाचारी शासन चलाएंगे? नहीं, अल्पकाल का शासन रह जाता है उनका।
अब वो चाहे एलिजाबेथ हो, क्या तो एलिजाबेथ जो है ना,
वो भी इस दुनिया का श्रेष्ठ शासनकर्ता नहीं कही जा सकती।
क्यों? क्योंकि प्रजातंत्र शासन है, या भगवान ने जो राजयोग सिखा करके राजाएं बनाए थे वो राजा का शासन है?
नहीं, प्रजातंत्र शासन।
तो ये तो
जो विकारी बुद्धि मनुष्य है ना, और उसमें भी थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, सेकंड क्लास जो प्रजा होती है, तो उन्होंने चुन करके बनाए, तो वो क्या राज्य करेंगे। तो बताया कि भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो अपने असिस्टेंट डायरेक्टर तैयार करते हैं। तो पहले पहले दो असिस्टेंट डायरेक्टर चाहिए, तीन चाहिए, चौथा भी चाहिए। तो पहले दो बताओ, जल्दी नहीं बता सकते। ब्रह्मा तो पांचों हो गए, ब्रह्मा पांचों बनेंगे, विष्णु परम ब्रह्म एक, दूसरा दादा लिंग, है आदि ब्रह्म परम ब्रह्म होने, उसे आदि ब्रह्मा को परम ब्रह्म नहीं कहेंगे, कहेंगे फिर वो अलग से लिखने की क्या बात। हा क्या पश पर अपरा, हा हा तो शिव बाप आते हैं तो जिस तन में प्रवेश करते हैं उसमें दो शक्तियां हैं। शरीर में प्रवेश किया ना, रथ में प्रवेश किया ना, तो शरीर रूपी रथ में उस अर्जुन को कहो या आदम एदम कहो, उसमें दो शक्तियां हैं, एक चैतन्य और एक जड़। जड़ है शरीर और चैतन्य है आत्मा। आत्मा को कहेंगे पराशक्ति, क्या, और शरीर को कहेंगे नीची, उसके मुकाबले पराशक्ति के मुकाबले ऊंची नीची। तो ये दो शक्तियां हैं, जिन शक्तियों में से अपराशक्ति को अपने कंट्रोल में लेता है, समझा कि नहीं। अपराशक्ति जो शरीर है, इंद्रियां, वो दसों इंद्रियों को और दसों इंद्रियों का जो कंट्रोल करने वाला मन है ना, मन है ना, उसको कंट्रोल करता है। तो मुख्य एमडी तो एक ही है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो तो शरीर रूपी रथ का मालिक है। उस रथ को चलाने वाला शिव सुप्रीम सोल है, जिसको कहें हेवनली गॉडफादर। वो हेवनली गॉडफादर अपने बुद्धि रूपी हाथ में लगाम लेता है ना, है? लेता है कि नहीं। तो वो लगाम चार घोड़ों की अपने हाथ में लेता है कि पांचवी आत्मा की भी लगाम लेता है अपने हाथ में, चार की लगाम अपने हाथ में लेता है। चार घोड़े सफेद दिखाते हैं ना, तो वो श्वेत वस्त्रधारी चार ब्रह्मा हैं, है ना। तो उनकी मन रूपी घोड़े की लगाम, मन को घोड़ा कहा जाता है ना, है? अरे घोड़ा है कि नहीं है, हाँ। और वो घोड़ा, मन रूपी घोड़ा अर्जुन की आत्मा के साथ भी है या नहीं है, उसकी आत्मा के साथ भी है, वो उसको कंट्रोल नहीं करता पूरा, क्या उसको क्यों नहीं कंट्रोल करता है? वास्तव में तो हाँ नंबर वन है ना, हाँ, परंतु उसकी इंद्रियों को कंट्रोल करता है। और मन, मन स्थूल इंद्रिय है, कि मन आत्मा का एक स्वरूप कहें, मन बुद्धि को क्या कहें, सूक्ष्म या इंद्रियों की तरह स्थूल, सूक्ष्म है ना, और आत्मा भी सूक्ष्म। तो आत्मा लंबा चौड़ा जो ऋषि मुनियों ने हिसाब बताई दिया वो बात नहीं है। वास्तव में जो अव्यक्त है, जो देखने में नहीं आता है, वो यही है। क्या? मन, बुद्धि और बुद्धि में भरे हुए अनेक जन्मों के भोगी आत्माओं के संस्कार। संस्कार होते हैं कि नहीं पूर्व जन्म के, कि नहीं होते हैं? है? होते हैं। तो वो संस्कार पूर्व जन्म के हर व्यक्ति की बुद्धि को कंट्रोल करते रहते हैं। उन संस्कारों को जब तक नहीं सुधारा जाए, सुधारा जा सकता कि नहीं? है? सुधारा जा सकता है। क्यों, कैसे, कैसे सुधार सकता है? मन, संस्कार और बुद्धि तो सर्वोपरि कौन है जो सुधारेगा इन तीनों में? बुद्धि। तो ये जो बुद्धि है ना, वास्तव में वो तीन जो दिखाए गए शिव आते हैं तो तीन के साथ ही आते हैं। त्रिमूर्ति, तीन देवताएं जो सबसे ऊंची त्रिमूर्ति, उनमें एक है बुद्ध रूपी तीसरे नेत्र का पार्ट बजाने वाला। कैसे बनता है? वो ऐसे बनता है कि शिव बाप जब हो, जो क्या कहें उसको, इन तीनों में ज्यादा बुद्धिवादी कौन है और कम बुद्धिवादी कौन? तीन मूर्तियों में सबसे ज्यादा बुद्धिवादी शंकर और सबसे कम बुद्धिवादी ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा को कहेंगे बच्चा बुद्धि, है ना? क्योंकि जिनमें बुद्धि होती है वो अपनी बुद्धि चलाएंगे, बाबा कुछ बात बोलेंगे और वो अपनी बुद्धि लगाएंगे, तो बात बढ़ जाएगी ना, कि लंबी हो जाएगी कि नहीं? बात लंबी हो जाएगी, काम जल्दी होगा, काम जल्दी नहीं होगा। और भगवान तो जो गीता ज्ञान सुनाते हैं वो महाभारत शास्त्र की तरह बड़ा लंबा चौड़ा है, पूरा मकान भर जाता है किताबों के, शॉर्ट में ज्ञान देते हैं, शॉर्ट में ज्ञान देते हैं। उसका नाम क्या है ज्ञान का? गीता, श्रीमद् भगवत गीता। ये सब टाइटल वाइटल निकाल देता है, जिसे बाबा कहते हैं संगमी को मत कहो, क्या कहो? पुरुषोत्तम संगमी। तो गीता माने डिसरिगार्ड कर दिया, क्या कहें? श्रीमत् भगवत गीता, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत जिसने दी। अब बताओ, दुनिया में इतनी आत्माएं, कीड़े मकोड़े इंसेक्ट है, मक्खी मच्छर जानवर पक्षी है और राक्षस है, ऋषि मुनि देव आत्माएं है ना, मनुष्य, आज की दुनिया में तो मनुष्य दिखाई पड़ते हैं ना। तो इतनी आत्माओं में से कौन सी आत्मा को कहें के वो ज्यादा भगवान के काम किए? मनुष्य, अरे 500-700 करोड़ मनुष्य, एक बताओ ना। मुकर्रर तो ब्रह्मा, अरे शास्त्रों के हिसाब से शास्त्रकारों को पहले समझाओगे तभी दुनिया समझेगी, नहीं तो समझेगी नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं गीता पाठियों को पहले पकड़ो।
हाँ शंकर को मैं कैसे पता कौन है शंकर है? उसके ऊपर एक बिंदी बनाओ रहे तो वो शंकर हो जाएगा शाह बना के। अर्जुन कैसे पता चलेगा कौन है अर्जन करने वाला? ज्ञान धन का अर्जन करने वाला ये ज्यादा है। आसाराम बाबू कहेंगे हम ज्यादा ज्ञानी, मुरारी बाबू कहेंगे हम ज्यादा ज्ञानी। है जब आकर के सुनाएंगे तो आसाराम बापू भी सुना रहे हैं, मुरारी बापू भी सुना रहे हैं, ढेर सारे गुरुजी बैठे आजकल सुनाए रहे हैं। अकाल मूर्त वो पहले वो मरे तब इन्हें पहचान में आएगा। क्या क्या अकाल मूर्त है कि नहीं? बंदूक ले आओ एक मार के देखो 500-700 करोड़ को तो पता चल जाएगा कौन अकाल मूर्त है। निराकार।
अरे यहाँ जन्म मरण के चक्कर में मनुष्य सृष्टि पर जो आत्माएं पार्ट बजाती हैं चारों युगों में, बड़े ड्रामा में, ह्यूज ड्रामा में पार्ट बजाती हैं, उन भोगी आत्माओं में से बताओ भगवान किसको चुनेगा? जिसे हम कहते हैं भगवान है, जिसका नाम शिव के साथ है।
हाँ ठीक है, शंकर का नाम शिव के साथ है, जो ऑलराउंड पार्टधारी है। ओहो इन्हें पता चल गया ऑलराउंड, सतयुग से लेके कलयुग तक ये जिंदा रहता है, इसे पता लगता है कि कौन ऑलराउंड पार्टधारी। महादेव कौन है? महादेव है? ऐसे हाथ फैला दे जो अपने हाथ में आ जाए नहीं आए वो ही महादेव।
अरे दुनिया में भगवान किसको पसंद करेगा? जो दुनिया का सबसे बड़ा सच्चा व्यक्ति हो। क्या तो सच्चाई किस में है और कौन कितना झूठा है, कितना झूठा बोलता है, घड़ी घड़ी एक बात बदलता है दूसरी बात पकड़ता है, तो उसको झूठा कहेंगे सच्चा? झूठा। दुकानदार होते हैं ना, कोई कोई दुकान लिखा होता है एकदम, क्या तो एकदम सच्चा या वो ढेर सारे दाम रख दे, कभी 8 रुपए की बेचे, कभी 10 रुपए की चीज बेचे, कभी 1 रुपए की बेचे, तो उसे लोग कहेंगे ये सच्चा है, इनको तुमने 10 रुपए में दिया, उनको 1 रुपए में दिया और हमको तुम 20 रुपए मांगते हो, तो झूठा हुआ ना है। तो इस दुनिया में सच्चाई तो सब पहचान सकते हैं ना नजदीक पहुंच के। क्या
कोई गुरु है,
गुरु सच्चा है या झूठा है उसके नजदीक रह करके ही नजदीक रहने वालों को पता चलेगा कि सच्चा है या झूठा है, या दूर वालों को पता चल जाएगा है? नजदीक रहने वालों को पता चलेगा। तो इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी बड़ी दुनिया में कितने लोग संसर्ग संपर्क संसर्ग में आते हैं, आते कि नहीं? तो उनमें से आज तक ये पहचान ही नहीं पाया कि पहचान लेते हैं है? अरे तुलसीदास ने लिखा हित अनहित पशु पक्षी जाना, जो पशु पक्षी होते हैं वो भी हित अनहित की बात पहचान लेते हैं, कौन हमारा हितैषी है, कौन हम पे आक्रमण करेगा, हिंसा करेगा, दुख देगा, कौन हमको दुख नहीं देगा। एक मिसाल दिया था, क्या याद?
बंदर का।
हाँ क्या बंदर का मिसाल दिया था? हा?
एक बड़ा मोटा ताजा बूढ़ा मंदिर बंदर था।
हाँ तो उसको कोई रोटी देता था, आराम से हाथों में से रोटी ले लेता है, और दूसरे बंदर क्या करने झपट्टा मारेंगे, लेके लेके भागेंगे।
क्या
वो झपट्टा जरूर मारते? तो इससे क्या साबित हुआ? उस बूढ़े बंदर ने समझ लिया कि ये व्यक्ति हमको पकड़ेगा नहीं और पकड़ के मारेगा नहीं, ये हमको रोटी ही देगा, जान लेते हैं नहीं। इसका यादगार शास्त्रों में भी है कि ऋषि मुनियों के आश्रमों में जो खूंखार जानवर होते थे ना, शेर बकरी एक घाट पानी पीते थे। तो यही बात है, भगवान आएगा तो इस दुनिया में क्या देखता है, सच्चा देखता है, है ना? तो हाँ, तुम्हारी ये जो शास्त्रकारी, हम लंबा चौड़ा शास्त्र, इस दुनिया में कितने गुरु हैं, इनमें कौन सच्चा है कैसे पता चलेगा? अरे तुम्हारे संसर्ग संपर्क में कौन आए, उनमें तो देखो पहले, गुरुओं को गिनती फिर रहे। जो तुम्हारे संसर्ग संपर्क में, जब कबूतर भी जान जाते हैं पढ़ता है या नहीं, हाँ वो भी जान जाते हैं। जब बार बार उनके पास कोई जाकर के दाना डालेगा ना, तो जान जाएंगे ये हमके, वो हमारे ऊपर आकर हमको पकड़ेगा नहीं, हाँ, और हमको पकड़ करके काटे पीटेगा नहीं, हाँ वो भी जान जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे संसर्ग संपर्क में जिंदगी में जितने आए, उनमें से किसी को तुमने सच्चा नहीं देखा, सिवाय कौन, वो नाम लेके अल्लाह लिख दे, ला ला, जान गए कौन सच्चा है तुम्हारे हिसाब से। अरे तुम्हारा गुरु कोई है कि नहीं जिसको तुमने सच्चा पहचाना? अल्लाह हम लिख दे तुम, तो तुम लिखो तुमने किसको इस दुनिया में सच्चा जाना, जिसमें बहुत विश्वास कर लिया? शिव बाबा, इसने हाँ, अभी तो वो तो संपर्क संसर्ग में आई नहीं, झूठ बोलता है। शिव लाओ हम लिख दे, प्रैक्टिकल में है कि नहीं, लो है कि नहीं, प्रैक्टिकल कैसे करें? प्रैक्टिकल में तुम्हारी जिंदगी में जो समझ में आए, उनमें से कोई बहुत ज्यादा सच्चा है कि नहीं, कॉन्फिडेंशियल तुम्हारे लिए, कौन लिख दो, अब तो लिख दो। प्रैक्टिकल में एक सच्चा शिव बाबा, और शिव बाबा कहते हैं जो बाप का धंधा सो बच्चे का धंधा, क्या जो बच्चा है वो ब्राह्मण तभी का पक्का बनेगा जो बाप का धंधा करे, नौकरी पौकरी भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट की नहीं करेगा। तो तुम्हारे हिसाब से प्रैक्टिकल जीवन में सच्चा कौन है, जिसको तुम बड़ी कॉन्फिडेंशियल बात जो रखने की होती है, जिसको तुम लिखते हो शिव बाबा हमारा सच्चा है, उसका भी सारा हिसाब किताब बता देते, वो बता कौन है? अरे क्यों झूठे बनते हैं, सच्चा सच्चा लिख दो, नहीं तो सच्चे रास्ते को पकड़ ही नहीं पाओगे। अब दुनिया भर की कथानियां लिखेगा लंबा चौड़ा। एक आदमी दुनिया जिंदगी में सच्चा नहीं पहचान पाया है, एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, उसको अपनी सारी कॉन्फिडेंशियल बात बता देता है। और किसी को नहीं बताता क्या? इसके बाप हो, इसकी घरवाली अगर कोई हो, या जिसको ये प्यार करता हो, या इसकी अम्मा हो, या जिसको जो भी हो ज्यादा प्यारा देहधारी, उसका बारंड निकल जाए और वो छुप जाए गए, तो उसके बारे में पूरा आता पता बताएगा किसी को, कॉन्फिडेंशियल को बताएगा कि नहीं, बताएगा कि नहीं? अब तो लिख दो, अरे लिख दो। कहते हमने धर्मराज बाप को पहचान लिया है, हमारे लिए वो ही जिंदगी में चच्चा है। सच्चा है कि चच्चा है जाने का है, गलती मान लेता हूं तो लिख के तो दे दो कम से कम, यहां कौन देखने बैठा है, कितना झूठा है। इसको कहते हैं झूठा और सच्चा, 20 बार बात बदलेगा, 20 बार लेखा पट्टी बदलेगा उसको कहते हैं झूठा। और इस परिवार में जिसके कंट्रोल में चलता होगा क्या, और जिससे डरता होगा वो तेरा भी बाप होगा, होगा कि नहीं? चलो अब तो बात क्या चल रही थी, भगवान आता है तो क्या देखता है, है? इस दुनिया में, इस दुनिया में सच्चाई किस में है देखता है कि नहीं? अब कितने साल हो गए है भगवान को आए हुए है? जो ब्रह्मा के बच्चे हैं अपन को ब्राह्मण कहते हैं कि हमारे को प्रैक्टिकल में ब्रह्मा मिला है और हम ब्रह्मा के बच्चे हैं, ब्राह्मण हैं, पक्के पक्के ब्राह्मण हैं, जो ब्राह्मण सो देवता विष्णु जैसे बनते हैं विष्णु कुल के। 80-82 साल होने गए, 80-82 साल में उस सुप्रीम सोल ने पहचान पाया होगा कि नहीं पहचान पाया होगा है? अरे तीन मूर्तियों को पकड़ा, तीन मूर्तियों के बीच में आया, उन तीन मूर्तियों में से तीनों में प्रवेश करता है और तीनों ब्रह्मा बनते हैं। पहले पहले बनते भी नहीं, हाँ तो वो तो शक्ति से नहीं पहचाना ना, हाँ भूल गया, 5 दिसंबर भूल गया, पूरा ही भूल गया। शिव सुप्रीम सोल बाप को किसने पहचाना, बिंदु रूप में बता दो, बार बार लिखो, बार बार पाटो, हाँ बेचारे गूंगे हैं, बोलते होते तो इनको बताते कि तुम झूठे हो कि सच्चे। कोई लिख करके 20 बार काटते बताते हैं, कोई बोल बोल करके एक बात बोले ना 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 दूसरी बात बोले, हाँ गलती हो गई। तो भगवान क्या सोचते, क्या देखता है आकर के यहाँ, और देखने में उसको कितना टाइम लग जाता है। हाँ 5 दिसंबर को मुकर्रर रथधारी ने पहचाना और वो देखता है, पहचानता पहले कौन है सच्चा, कौन है इस दुनिया में सुप्रीम सोल, कि ये सच्चा है। क्या किस बात में सच्चा, कि मैं आकर के जो पढ़ाई पढ़ाता हूँ, पहली पढ़ाई क्या पढ़ाता हूँ है, पहली पढ़ाई आत्मा, तुम ज्योति बिंदु आत्मा, तो वो ज्योति बिंदु आत्मा जो भ्रकुटि के मध्य में बताई बताई ना, संस्कार भी कहते हैं क्या, ब्रह्मोर मध्य प्राणमावेश सम्यक, गीता में लिखा है ना, भ्रकुटि के मध्य में प्राण रूप आत्मा को अच्छे से याद करना चाहिए मरते समय है। तो आत्मा कहाँ रहती है, जहां माताएं आज भी याद कर बिंदी लगाती है, वो बिंदु रूप आत्मा भ्रकुटी मध्य ले, अब बाप ने बता दिया। तो बच्चों का काम क्या है, है? पक्की प्रैक्टिस जल्दी से करें या न करें है? हाँ तो कोई तो प्रैक्टिस कर ले, सोचने में ही है कि पक्का निश्चय नहीं कर पाते कि आत्मा है, पहले तो ये बुद्धि में बैठे बात कि हाँ मैं आत्मा बिंदु हूं। अच्छा बैठ भी जाए तो फिर उसकी प्रैक्टिस की बात है, क्या बार बार याद करो मैं स्टार हूँ स्टार हूँ स्टार हूँ, मेरा बाप स्टार है स्टार है स्टार है, और दोनों को मेल मिलाने की याद करो है। तो कोई तो एड़ी चोटी की पूरी ताकत लगा देगा और कोई चलो थोड़ा ये कर लें थोड़ा वो कर लें वो कर लें, उन बातों में लगा रहे। तो कोई तो निकलेगा जिसे यहां बिंदु ऐसे दिखाई पड़े बुद्धि के नेत्र से, जैसे साक्षात्कार करने वाले भक्तों को बंद आंखों से साक्षात्कार होता है। चलो छोटा रूप सूक्ष्म रूप न दिखाई पड़े, कुछ कुछ तो देखने में आए है? थोड़ा स्टार के मुआफिक आसमान का सितारा तो दिखाई पड़े, पड़े कि नहीं पड़े, कर सकता है कि नहीं। हाँ, तो इस प्रैक्टिस में जो बच्चा आगे बढ़ता है और प्रैक्टिस की लेंथ बढ़ती है, कितनी समय की लंबाई बढ़ेगी कि उतनी बनी रहेगी है? कम होगी, बढ़ेगी ना प्रैक्टिस करने से। तो कोई एक सेकंड, कोई दस सेकंड, कोई तीस सेकंड, ऐसे हो सकती है कि नहीं? हाँ, प्रयास करने से होती है। तो निरंतर जब हो जाएगी तो शिव को यहां टिकने की दरकार नहीं है क्या? हाँ, अब वाचा चलाने की भी दरकार नहीं है। ये वाचा कब तक चलाई जा रही है? जब तक बच्चे देवता नहीं बने। और देवता बने तो निरंतर बिंदु रूप स्टेज रहेगी, जैसे सत्युग त्रेता में देवात्माएं अपन को बिंदु समझते हैं 24 घंटे। क्या समझते कि नहीं? समझते हैं। तो ऐसी स्टेज जो बच्चा धारण करता है तो शिव बाप को पक्का पता पड़ता है या नहीं पड़ता है? अब पता पड़ता है तो वो तो प्रेरक है ना, है सबके उर प्रेरक हृदय दीन बंधु रघुनाथ है, भगवान के लिए बोला तुलसीदास ने कि वो सबके हृदय को प्रेरित करने वाला है, जो भक्त हैं उनके भी हृदय को प्रेरणा दे देता है, और जो भक्त नहीं है ज्ञानी है वो तो जल्दी पकड़ लेते हैं। तो वो सच्चाई को देखता है, क्या कहते हैं उसे शिव को, उसके टाइटल क्या कहते हैं? सत्यम शिवम सुंदरम। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गॉड इज क्या? ट्रुथ। तो सच्चाई ही 100% है तो वो बाप समान, शिव सुप्रीम सोल समान इस सृष्टि पर भगवान के रूप में प्रत्यक्ष हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। तो वो कहा जाता है महादेव। कैसा देवता? जो शिव बाप प्रेरणा करे तो पट से पकड़े, प्रेरणा माने संकल्प अंदर आएगा ना तो संकल्प को जल्दी से पकड़े। संकल्प आए ब्राह्मणों को और वो बार बार संकल्प आए, याद में बैठे हैं और वो ही संकल्प आ जाए, फिर याद में बैठे हैं फिर वो ही संकल्प, फिर हाथ में बिंदु को याद करें, बिंदु बाप को याद करें, फिर वो ही संकल्प, और वो बार बार संकल्प आ रहा है और करे नहीं। तो इस आर्य को समझने वाला देवता हुआ नहीं हुआ? अब यहां तो ये वाचा चलाने वाले मनुष्य हैं। क्या देवताएं इशारे से समझते हैं या वाचा से समझते हैं? वाचा बहुत कम, हल्की थोड़ी सी, जैसे कोई में प्यार हो जाता है ना, तो यूं इशारे बाजी की समझ गया, दूसरा नहीं समझो। क्या होता है ना ऐसा? हाँ, पक्का जानता है। तो ऐसे ही बात है, शिव बाप जो इशारा देते हैं संकल्पों में, क्या वो इशारे को समझे, क्योंकि शिव बाप तो सुप्रीम सोल है ना, है ऊंचे जो ऊंचा संकल्प देगा या नहीं देगा कि नीचे संकल्प देगा? नहीं, तो ऊंचे से ऊंचा संकल्प देता है, याद में बैठेंगे वो बार बार संकल्प आएगा याद में, तो वो काम ईश्वरीय सेवा का जल्दी करना चाहिए। बाबा कहते हैं नहीं करेंगे तो जैसे कि कोई फल ताजा नहीं खाया, फ्रीज में रख करके कई दिन रख दिया और सड़ा सड़ाया फल खाया, अब वो फ्रीज में रखा हुआ खराब होगा कि अच्छा बना रहेगा? कहते हैं उन जीव का जो निकलता है, अरे क्या जीव का जो निकलता है, आलू ढेर के ढेर डाले जाते हैं उसमें कोल्ड स्टोरेज में, उनको निकाल के रखते हैं, वो आलू जल्दी सड़ जाता है कि नहीं? उसे कोल्ड में ही रखे रहो तो नहीं सड़ेगा, बाहर निकाला और सड़ गया। जैसे इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जब जलमयी होती है और जलमयी जब शांत हो जाती है, लगातार बरसात होती है ना, बरसात शांत हो जाती है तो बहुत बरसात होने से ठंडी बढ़ती है कि कमती होती है? बहुत बढ़ जाती है। तो सारी दुनिया में कोल्ड बर्फ ही बर्फ जम जाती है। क्या? तो जो शास्त्रों ने दिखाया ना कि जलमयी के बीच में है, हाँ, वो सत्यव्रत महाराज जी जो है ना, हाँ, उनको सत्य का व्रत लेने वाले, हरिश्चंद्र कह दो, सत्यव्रत धारी कह दो, सत्यव्रत कह दो, कुछ भी कह दो, सत्यनारायण कह दो, तो वो आत्मा को ये डायरेक्शन मिलता है भगवान से। क्या क्या डायरेक्शन मिलता है? क्या करो? हाँ, इस जलमयी में तुम लकड़ी तो ऊपर रहती है ना, तो तुम दो चार लकड़ियां इकट्ठा करके एक नवैया बनाओ, नहीं तो मैं ही नवैया बन के आ जाऊंगा। नवैया काठी बन के भगवान आ सकता है कि नहीं? चैतन्य नवैया होगी या काठ की नवैया होगी? चैतन्य नवैया होगी। तो उस नवैया पे तो जितने भी बीज हैं, अरे बीज तो कोई हल्के होते हैं कि नहीं, तो वो कहीं ना कहीं पहाड़ पर भी पहुंच जाते हैं। जब पानी लिहोर बांधता है तो जितनी भी चीजें हैं वो सब किनारे किनारे हल्की हल्की तो पहुंच ही जाते। तो बीज इकट्ठे करना और वो सारे बीज इकट्ठे करके मुख्य मुख्य बीज वो नाव में डाल लेना। तो वो बात मत्स्य अवतार की उन्होंने दिखा दी। वो मत्स्य अवतार कोई दूसरा नहीं है, वास्तव में वो ही मछली के रूप में पार्ट बजाने वाला मगरमच्छ है जिसके ऊपर गंगा जी सवार होती है। क्या? गंगा कंट्रोल करती है। क्या नाम दिया? मगरमच्छ। कौन सी नदी में ज्यादा मिलते हैं भारत में? गंगा नदी। अगर मगरमच्छ से तो छोटी छोटी मछलियां तो डरती हैं ना, है? तो दिखाया है उन्होंने कि मत्स्य अवतार में छोटी सी मछली बुद्ध रूपी हाथ में आ गई अंजलि में, तो बोलने लगी कि मेरे को डर लग रहा है, मेरे को मगरमच्छ खा जाएंगे, सागर में तो मगरमच्छ बहुत होते हैं, बड़े बड़े जीव जंतु, तो मेरे को बचा लो। तो और उनसे भी अगर बच गए तो ये जो मछुआरे हैं वो पकड़ ले जाएंगे। और बंगाल सागर में, बंगाल बंगाल में सागर है ना, है कि नहीं? हाँ, बंगाल सागर के नजदीक में वो जाके मेरे को बेच देंगे और मेरे काट पीट के खा जाएंगे। तो वो बंगाल के राजा रहे होंगे, कौन? सत्यव्रत जी महाराज। राजा कौन बनते हैं? राजा तो वो ही बनते हैं, कौन? जो भगवान को पहले पहचानते हैं और भगवान को पहचान करके उनके रास्ते पर चलते हैं। जैसे पांच पांडव दिखाए जाते हैं ना, भगवान को जानते भी थे, मानते भी थे और चलते भी थे। तो उन पांच पांडवों कोई सरगना होगा मुखिया की नहीं है? हाँ, उसका नाम दे दिया युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला, हिलता नहीं था। तो ये सत्य असत्य का युद्ध है इस दुनिया में। क्या? झूठे धर्म भी है और सच्चा असत्य सनातन धर्म भी इस दुनिया में, कहीं कहीं, बहुत दुनिया में तो नहीं, कहीं कहीं होंगे बाहर भी, लेकिन भारत में खास। जैसे मिजोरम में एक परिवार है, है? माता पिता के जैसे बताया रास्ता है वैसे चलता है। माता पिता का डायरेक्शन माना वसुधैव कुटुंबकम, जैसे गणेश जी ने क्या किया, माता जी का पिताजी का प्रदक्षिणा कर ली, बस जैसे सारी दुनिया को जीत लिया, उनकी पूजा पहले कर वो हो गई। तो ऐसे ही है, भगवान आता है तो सत्य को पकड़ता है। तो तुमने जिंदगी में अभी वो जो लिख के दिया ना, उसके नाम के अलावा और कोई सच्चा आदमी नहीं देखा, नहीं देखा ना, कि उससे भी ज्यादा कोई सच्चा देखा प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिकल में वो तो बताता है, वो तो बताता है सब धंधों में है नुकसान सिवाय ईश्वरी बन गए। अब क्या कर रहे आज से बहुत बढ़िया है बदल गया आपको माता जी। हाँ हम इन सब शक्तियों का काम चल जाएगा। क्या रह गया हड्डी। कल क्या कहता है मेरी तो हवा निकल गई। हवा नहीं निकाल लेना देखो बिटनेस है तुम्हारी। हाँ पक्का रखना एकदम। कैसे बंद कर दोगे? बंद कर दोगे तो टेंशन मिलेगी न कुछ मिलेगा। नौकरी नौकरी चाकरी करने वालों को पेंशन मिलती कि नहीं गवर्नमेंट से है? और प्राइवेट हो तो चलो कोई बात नहीं, सरकारी में तो वो पेंशन बंद कर देते हैं। फिर यहां तो फिर आज ही होके चलना पड़े है? कोई जरूरी है कि वो निराकार जिसको निराकार बनाता है वो हमेशा दिखाई पड़ेगा? हाँ और पता नहीं इस दुनिया में कहां कहां उड़ता फिरता सबको दिखाई पड़ता है? नहीं निराकार है तो वो भी निराकार बनेगा। निराकार किसी की पकड़ में आएगा? पकड़ में नहीं आएगा तब क्या करोगे? भाई अभी तो वो प्राइवेट गवर्नमेंट में नौकरी कर रहे हैं तो वहां से मिल रहा है पेट पूर्ति के लिए। वो नहीं है तो सरकारी गवर्नमेंट में है तो सरकार से मिलता है, है? अब ईश्वरीय गवर्नमेंट में अगर ईश्वर को पहचान लिया प्रैक्टिकल रूप में तो वो ही जिम्मेदार है। लेकिन वो भी तो निराकार बन जाता है। निराकार बन जाता है कि साकार बन जाता है, है? सबको पकड़ में आता है। सबको पकड़ में आए तो अमेरिका का जो राष्ट्रपति है या इंडिया का जो प्रधानमंत्री है वो पहले पकड़ लेगा। पकड़ लेगा कि नहीं? हाँ नहीं पकड़ेगा। हाँ अगर पकड़ ले वो तो वो जो ऊंची से ऊंची अच्छी है जो यहाँ के चोर डकैत जैसे स्वभाव के हैं ना वीरप्पन को कितने साल में पकड़ पाया गवर्नमेंट ने है? देखो उसको नहीं पकड़ पाया। ये तो इंडिया की गवर्नमेंट है उनकी हालत है जो कि सबसे कमजोर गवर्नमेंट है आज दुनिया में अमेरिका की गवर्नमेंट है। उनकी बड़ी भारी बिल्डिंग थी इसने तोड़ दी लादेन ने। हाँ उस लादेन का अमेरिका कितने सालों तक कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। क्या बिगाड़ा भी तो अंदर वाले ने ही बिगाड़ा होगा। तो ऐसे ही यहां झूठे भी हैं और सच्चा भी है। झूठे भगवान को भी धोखा देते हैं क्योंकि उनकी आदत पड़ जाती है झूठ बोलते बोलते झूठा लिखते लिखते। अभी कभी नहीं लिखना। क्या कहा आलू ने जब गया पतीली में खुदरबुदुर खुदरबुदुर खुदरबुदुर। क्या दिमाग में खुदरबुदुर चलते ही नहीं? हाँ तो सबसे बड़ी चीज है इस दुनिया में सच्चाई। और हर आदमी अभी बताए ना पशु पक्षी भी सच्चाई को हित को है। सच्चा कौन है? जो हित करे सो सच्चा और अनहित करे तो झूठा। जैसे भगवान का नाम क्या देते हैं? शिव। शिव माने हित, कल्याणकारी, अकल्याणकारी, कल्याणकारी। ये नाम क्यों मिला? जैसा काम वैसा नाम। तो दुनिया जान जाती है एक टाइम ऐसा आता है कि एक आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर है जरूर सत्ताधारी। क्या जो आकर के पार्ट बजाती है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर और सच्चा पार्ट बजाती है। क्या सच्चा पार्ट? हमारा कल्याण जरूर करेंगे उसके अलावा। अरे हाँ और कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं है जो हमारा हित कर सके कल्याण कर सके। और जो हित कर सके हमारा कल्याण कर सके हैं? और हम क्या चाहते हैं? हम तो ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा के बच्चे हैं। क्या चाहते हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामया। क्या चाहते हैं? ऐसे तो नहीं कि हम लड्डू पेड़ा खाएं हैं, कहां श्रीनाथ द्वारे में जाकर के खूब पैसा कमाएं, बढ़िया जी नौकरी करें, नहीं तो व्यापार करें, ढेर सारे पैसे वहां दें और 36 प्रकार के भोजन खाएं। क्या
अब भगवान आया हुआ है वो तो डायरेक्शन देता है क्या बच्चे सबसे अच्छा भोजन है क्या दाल भात आलू। अब कोई न कोई तरीका निकाल करके बता निकाल लेते हैं जैसे आलू को देखो थोड़ा थोड़ा विश्वास है डॉक्टरों की डॉक्टरी के ऊपर है कि नहीं अरे होता है कि नहीं हाँ होता है किसी को एलोपैथी में विश्वास किसी को होम्योपैथी में विश्वास किसी को नेचुरोपैथी में विश्वास तो अपन लोग तो पक्के भारतवासी हैं ना हा? जो आया सब के ऊपर विश्वास क्यों क्योंकि हम तो भगवान को फॉलो करने वाले हैं भगवान को पहचाना ना अपन लोगों ने तो भगवान को पहचान लिया तो भगवान को पहचान लिया तो भगवान क्या कहता है वो संस्कृत गीता में भी लिखा हुआ है श्रद्धा से मुझे जो कोई है पत्रम पुष्पम फलम तोयम सस्ती सस्ती चीज भी देगा तो हम ग्रहण कर लेते श्रद्धा से क्या कहा तो जो लोग डॉक्टर बनते हैं वैद्य बनते हैं हकीम बनते हैं है? नेचुरोपैथी के डॉक्टर बनते हैं उनको वो धंधा पकड़ने की जो क्या कहते हैं एटीट्यूड कहें क्या कहें धंधा पकड़ने का जो उनकी मेंटेलिटी है ना वो उन्होंने अच्छाई से पकड़ी है कि दुनिया का हम कल्याण करेंगे इसलिए वो पढ़ाई पढ़ी है कि अकल्याण के लिए पढ़ी है? थोड़ा सा भावना है कि भाई हमारी भी पूर्ति होगी और हम दुनिया का भी कल्याण करेंगे हमारा पाप पुण्य बनेगा तो भगवान भी जिनको श्रद्धा है कल्याण करने की भावना है वो कुछ देते हैं तो उनको ग्रहण कराए मिसाल दिया क्या मिसाल दिया ब्रह्मा के मुख से ही मिसाल दिया के जब भारत में ओम मंडली की आत्माएं आ गई तो बाजरे की रोटी और छाछ पतली पतली दी और कुछ नहीं दिया कई दिन और जो निमोनिया के मरीज थे उनको भी कुछ नहीं हुआ क्या उनको भी कुछ नहीं हुआ और जिनको श्रद्धा विश्वास नहीं था वो भागने लगे क्या पता है कितने रह गए थे हैं नहीं हैं अरे 400 तो वो मोहम मंडली की बात है हैं हाँ 75-80 आत्माएं रह गई यज्ञ में पुरानी और बाकी सब बाद में ऐड हुए हैं सब भाग गए सिंधी थे ना तो हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ ना तो बाबा ने कहा तुम अपने जिनको देखा बाबा ने कहा इनको श्रद्धा विश्वास तो है नहीं ये तो बस ऐसे ही रोटी दाल खाने के लिए पड़े हुए हैं अपनी सुरक्षा के लिए तो बस उनको कहा तुम अपने जो सिंधी परिवार आए ना इंडिया में हैं उनकी जाके सेवा करो भेज दिया तो वो दिल से जाएंगे या खींच खांच के जाएंगे कैसे जाएंगे दिल से जाएंगे मजबूरी में चले गए बाबा ने 20 बार बोला कि जाओ भाई सेवा नहीं करोगे ईश्वरी सेवा नहीं करोगे तुम्हारा भाग्य क्या बनेगा यहाँ बैठे बैठे खाते रहोगे तो तुम तो दासवासी बनोगे 20 बार कहा जाएगा बुद्धि में बैठ गई बात भारतवासी तो है ना भारतवासियों की आदत है कोई बहुत पीछे पड़ता है ना क्या तो बात मान लेते प्रभाव पड़ जाता है सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर तो भगवान ने भी आकर के क्या बताया कोई श्रद्धा से कि अगर हित की भावना से है ना अरे कौन सी सब्जी अच्छी लगती है हाँ बैंगन की और बढ़िया सब्जी बनाते हैं तो भगवान को अर्पण करेंगे तो वो खाएगा कि नहीं खाएगा हाँ जरूर खाएगा तो ऐसे ही है जो डॉक्टर लोग हैं वो श्रद्धालु हैं कल्याण चाहते हैं सृष्टि का कि नहीं चाहते कल्याणकारी हैं
तो मैं हकीम हूँ, वैद्य हूँ, डॉक्टर हूँ, वो जो कुछ भी कर रहे हैं मेहनत या खोज कर रहे हैं दवाइयों की, कल्याण के लिए कर रहे हैं ना, तो उनकी बात मान लेनी चाहिए कि नहीं मान लेनी चाहिए? कब तक? तब तक तो मान लेनी चाहिए जब तक हम बाप सुप्रीम सोल ने जो हमें बताया है, तुम्हारी याद की प्रैक्टिस 24 घंटे में कम से कम 8 घंटा होनी चाहिए। कितने? 8 घंटे। जब तक वो प्रैक्टिस पक्की नहीं हुई है तब तक तुम राजयोगी नहीं हो, और राजयोगी नहीं हो तो तुम्हें वशीकरण मंत्र पक्का नहीं है तुम्हारा। कभी काम कर भी सकता है, काम नहीं भी कर सकता है, धोखा दे सकता है, लेकिन अगर 8 घंटा पक्की प्रैक्टिस हो गई बुद्धि को एक में एकाग्र करने की, तो क्या होगा? तुम्हें वो वशीकरण मंत्र की पावन मिल जाएगी। इसको कहते हैं ईश्वर का सिखाया हुआ विज्ञान। एक है ज्ञान और एक है विज्ञान। इसलिए ब्रह्मा के मुख से ब्रह्मा कुमारियों ने सुना, हमने भी सुना, तुमने भी सुना, क्या कि अभी गीता ज्ञान कहेंगे जब तक ब्रह्मा के मुख से बोला गया, दादा लेखराज के मुख से गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। क्या अमृत तब बनता है जब सागर को मंथन किया जाए। तो लोगों ने वो स्थूल सागर समझ लिया ऋषि मुनियों ने, वो स्थूल सागर की बात नहीं है, है ना? इस सृष्टि पर सबसे गहरा कौन है? पहाड़, नदियां, पोखरे है, ये जो जो क्या होते हैं समुद्र है? सबसे गहरा कौन है? हाँ, सागर ही सबसे गहरा है। तो कोई जरूर सच्ची रूपी रंगमंच आत्मा है जो बड़ी गहरी है। क्या गहरी माने? गहरी का मतलब क्या है? जिसका पार कोई पाई नहीं सकता। प्रशांत महासागर अकेला नहीं, वो तो खंड खंड करके बांटा हुआ है 7 खंडों में। वो तो एक है या 7 हैं? है वो सागर है जिसे हम एक समुद्र कहें, समुद्र कहें, सागर कहें, वो वास्तव में तो एक है ना। जब एक भारत ही था, कुछ दूसरा महाद्वीप नहीं था, तो सिर्फ एक ही सागर था कि बटे हुए थे। हाँ, ये तो दूसरे दूसरे धर्म पिताएं आए, दूसरे दूसरे महाद्वीप बने, तो दूसरे दूसरे सागर बन गए, बनेगी नहीं? हाँ, तो जो धर्म पिताएं आए वो भी अलग अलग प्रकार के ज्ञान के सागर हुए कि नहीं? हाँ, वो अपने अपने धर्म के धर्म पिता, वो क्या कहते हैं, धर्म पिता हो गए, माने प्रजापिता हो गए। नहीं समझ में आया? अपने अपने धर्म के छोटे छोटे प्रजापिता हुए, बड़े बड़े, बड़ा का बड़ा, बापों का बाप हुआ नहीं? बापों का बाप तो एक ही सागर है। तो वो जो एक सागर है, उस सागर की बात है जिस सागर में वो ज्ञान सूर्य, चैतन्य ज्ञान सूर्य, जो कभी भी किसी के साथ लगाव में नहीं आता, अटैचमेंट में नहीं आता, वो एक ही आत्मा है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, जो कभी क्या किसी से आकर्षित होकर के गड्ढे में नहीं गिरती, उसको कहेंगे अक्षर। अक्षर माने क्षर माने जो नीचे गिरे, अक्षर माने जो न गिरे। तो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जितने भी ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली आत्माएं हों या थोड़ा राउंड पार्ट बजाने वाली आत्माएं हों, वो सब भोगी आत्माएं हैं, क्षरित होने वाली क्षर है। क्षर है माने पतित होने वाली, उनकी शक्ति छीन होती रहती है, आत्मा की भी शक्ति छीन होती रहती है, शरीर की भी शक्ति छीन होती रहती है। तो उन आत्माओं में एक आत्मा ऐसी है जो भले चरित होती है सबसे जास्ती, जितनी जास्ती चरित होती है क्या धीरे धीरे या देर में, कब श्रेष्ठ कही जाए और कब नीच कही जाए, धीरे धीरे उसकी शक्ति छीन हो तो श्रेष्ठ आत्मा। और इस द्वैतवादी दुनिया में दूसरे धर्म पिताएं आना शुरू करते हैं और वो दख से नीचे उतर जाए तो क्या कहेंगे, नीचे कहेंगे। तो ऐसे ही है, भगवान जब आते हैं ना तो जिस परम ब्रह्म में प्रवेश करते हैं उसके द्वारा चार आत्माओं को निकालते हैं। पता है कौन कौन मालूम है? हाँ हाँ, सनत कुमार एक अच्छे भी हो जाएंगे। सनत कुमार चार कहे जाते हैं, सनत, सनंदन, सनत कुमार, उनको कहते हैं सनकादि। तो वो चार आत्माएं हैं जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर हैं, बड़े बड़े समंदर हैं। कितने मालूम है कौन कौन? चार समंदर बड़े बड़े हैं, कौन कौन से? प्रशांत महासागर और अंध महासागर दो। अरे बस भूल गए है? अरे भूमध्य तो बहुत छोटा सा है, हिंद महासागर। हाँ हिंद महासागर भी तो है, हिंद महासागर के आसपास तो दो हैं, पश्चिम है अरब सागर जहां मुसलमानों का प्रभाव ज्यादा हो गया, और पूर्व में बंगाल, बंगाल की खाड़ी है, सागर नहीं कहेंगे। लेकिन एकदम दक्षिण भारत के ठेठ दक्षिण में जो सागर फैला वो सारा हिंद महासागर कहा जाता है। तो कितने हुए है? तीन हुए, चौथा और निकालो, भूले बताओ बताओ जल्दी बताओ। हाँ अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। हाँ आर्कटिक महासागर है कि नहीं, कैसा है, है? उसमें कोई खासियत है कि नहीं, क्या खासियत है? हाँ बर्फ जमी रहती। इसका मतलब ये हुआ कि कैलाश पर्वत पर जो शंकर जी को दिखाते हैं उससे भी उत्तर में कोई है और सागर भी है, क्योंकि वो तो ज्ञान जल का सागर है, अंतिम जन्म में पत्थर बुद्धि बन जाता है। कौन? जिस पत्थर की मंदिर में, शिव के मंदिर में पूजा करते हैं, बन जाता ही नहीं। लेकिन उससे भी ऊंचा एक और है जो बर्फ, ठंडा दिमाग, वो कौन सी आत्मा है? ये वो शशि रूपी रंगमंच पर होता है जहां इशारा कर दिए। उससे ज्यादा ठंडा दिमाग और कोई नहीं होता, वो रंगमंच पर होता है पृथ्वी पर, शिव नाम लिख दिया। शंकर तो बता दिया ना, वो कैलाश पर्वत पर रहता है। थोड़ा माताजी को नक्शा दिखाया करो, क्या इनको नक्शा दिखाएंगे तो पता चलेगा कि दुनिया में कैलाश पर्वत कहां पर है, जहां पर है हिमालय पहाड़ है, उसके उत्तर में भी एशिया है, उसके उत्तर में कौन सा बताया अभी, आर्कटिक महासागर, वो बर्फ जमी रहे। तो वो नहीं, ठीक है वो चंद्रमा है, ज्ञान चंद्रमा कहा जाता है, लेकिन वो बीज है। अब बीज है तो पावरफुल होगा। अरे भाई
जगदम्बा। अरे बाप रे,
हाँ सच्चा भी तो होना चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए कि नहीं? हाँ तो बाप तो अपने से भी ऊंचा रखते हैं, उसे ऊंचे पे ऊंचे है कि नहीं? हाँ नॉर्थ है, नॉर्थ माने आर्कटिक महासागर कैसा है, बहुत सच्चा है कि नहीं? सच्चा है या झूठा है? हाँ उसे धन ज्यादा होना चाहिए उसके पास, तो दुनिया ने समझा के वो क्या नाम रतन होंगे, हीरा जवाहरात होंगे उसके पास। हीरा जवाहरात सोने चांदी की बात नहीं है, ये ज्ञान रत्नों की बात है, है? तो सच्चा होता है उसके पास वो ज्ञान रत्न ज्यादा ठहरते हैं। क्या बोले, देखने में ना है लेकिन वो तो धन तो कहाँ रखा जाता है, है? छुपा के रखा जाता है कि सबको दिखा के रखा जाता है? छुपा के रखा जाता है, तो वो उसकी आत्मा में जैसे पवित्रता का धन मौजूद है। सबसे बड़ा धन कौन सा? जिस धन की ताकत से दुनिया के सारे काम होते हैं। आप दुनिया क्या समझती? स्कूल स्थूल धन की ताकत से दुनिया के सारे काम हम कर सकते हैं। क्या बड़े से बड़ा काम क्या किया दुनिया वालों ने? बहुत पावर बनाई, एटम बम बनाए, तो उसमें कौन सी ताकत लगाई? दिमाग की ताकत लगाई? नहीं, दिमाग की ताकत तो उन्होंने ऋषि मुनियों ने जो शास्त्र लिखे हैं ना उसमें अग्नि अस्त्रों की बात लिखी है उससे सीख ली। पैसा के बगैर बन गए तो पैसा ही सबसे बड़ी ताकत समझते हैं, जो धन संपत्ति स्थूल है ना उसको बड़ी ताकत समझ लिया, लेकिन वो स्थूल धन संपत्ति तो ये हाथों का मैल कहा जाता है। क्या जिनको हाथ पांव होते हैं या जिनको इंद्रियां होती हैं वो कमाते हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन बड़े से बड़ी कमाई क्या चीज की है सो दुनिया नहीं जानती। बड़े से बड़ी कमाई, बड़े से बड़ा धन है ज्ञान धन, जो ईश्वर के पास है। किसके पास? उसके पास है जो जन्म मरण के चक्र में आत्मा नहीं आती है, क्योंकि सच्चरूपी रंगमंच पर जो जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं वो तो सब भोगी हैं। भोग भोगते भोगते इंद्रियों से, चाहे ज्ञान इंद्रियों से चाहे कर्म इंद्रियों से डिस्चार्ज होते होते उनकी आत्मा बहुत कमजोर हो जाती है। भोगी आत्माएं भोग भोगने से शक्ति छीन होती है, तो भगवान आके ऐसी तरकीब बताते हैं। क्या क्या करो? जो तुम इस दुनिया में बड़े पावरफुल आत्मा बनकर के रहो, भले भोगी भी बन के रहो, लेकिन वो तरकीब क्या बताई? तरकीब बताई कि इन इंद्रियों से जो भोग भोगते हो जितना कम भोग भोगने की प्रैक्टिस करेंगे क्या उतनी तुम्हारी आत्मा पावरफुल बनेगी, जन्म जन्मांतर दूसरी आत्माओं के ऊपर कंट्रोल करते रहे। तो वो हुआ सबसे बड़ा सागर। समझा कि नहीं समझा? सबसे बड़ा सागर वो हुआ जो ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान रत्नों को सबसे जास्ती जीवन में धारण करता है। और कब धारण करेगा? कि आधा दुनिया का धंधा करता रहे, आधा पेट का धंधा करता रहे, पेट की बड़ी चिंता। अरे जब वो ऊपर वाला आकर के बता रहा है और दुनिया में भी दुनिया वालों ने भी इसका प्रूफ दिया। क्या किन्होंने प्रूफ दिया इस बात का? क्या कि जो खुदा के सच्चे बच्चे हैं उनको क्या चिंता करने की दरकार? झूठे हैं वो चिंता करें, क्योंकि उन्हें जो सत्य से सत्य सत्य से सत्य सुप्रीम सत्य है उसकी पहचान ही नहीं होगी, क्योंकि प्रैक्टिस पड़ गई है झूठ बोलने की। इसलिए तो दुनिया में जो आदमी सारा जीवन जो धंधा करता रहता है अंत में वो याद आता है कि नहीं? वो याद आता है। चोरी करता रहेगा तो अंत में चोरी याद आ जाएगी, झूठ बोलता रहेगा तो अंत में भी कोई बात उससे पूछेंगे झूठ बोल देगा। क्या उसे किसी के ऊपर विश्वास नहीं होता? अपना लड़का भी होता है क्या, मरते दम तक इतना मोह रहता है कमाई हुई संपत्ति में जो छुपा के रखी होती है बाप ने, कि वो अपने बच्चे को भी मरते दम तक नहीं बताते, बेहोश हो जाएंगे चले जाएंगे क्या पता ही नहीं चलेगा। जाने कितने कितना राजाओं की धन संपत्ति जमीन की जमीन में ही गड़ी रह गई, रहेगी कि नहीं, वो धन संपत्ति छोड़ दो। जो बड़े बड़े आयुर्वेद आचार्य हुए हैं हैं, और बड़े बड़े होशियार हुए हैं, उन्होंने अपनी नॉलेज की पावर अपने बच्चे तक को पूरी नहीं बताई। वो पावर, वो ज्ञान की संपत्ति जो मनुष्यों की बनाई हुई संपत्ति, वो भी खलास हो जाती है। तो ईश्वरीय ईश्वर में जो आकर के दी है संपत्ति, कौन सी संपत्ति, जो ईश्वर के पास अखूट ज्ञान दह का भंडार है, जो जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं के पास हो ही नहीं सकता, भले इस दुनिया के बड़े से बड़े ऋषि मुनि क्यों न हुए हों, बड़े से बड़े शास्त्र बनाने वाले, कोई मालूम कौन सा शास्त्रकार जो बड़े से बड़ा शास्त्रकार दिखाया जाता है, व्यास। हाँ तो व्यास जो हुआ ना वो तो मनुष्य है ना, दाढ़ी मूछ वाला है ना, वो भी बुद्धू क्या, क्योंकि जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्मा है ना, मनुष्य आत्मा है ना, कभी देव आत्मा रही होगी है, तो ये तो साबित होता है कि शास्त्रों में उसका नाम व्यास प्रसिद्ध है। वे माने विशेष, आस माने बैठ गया, काहे के लिए बैठ गया, इसने जिंदगी में क्या बड़ा काम किया, सारी जिंदगी में उसने वही काम किया, क्या काम किया, अरे बाप रे है? कितने हजार इस लोगों का है? इतना बड़ा शास्त्र लिख दिया, और एक नहीं भागवत, कितनी लंबी चौड़ी भागवत, और एक दूसरे पुराण भी, दूसरे उपनिषद, यानी क्या क्या लिखवाए, तो जिंदगी खत्म हो गई उसी काम। तो उसका नाम पड़ा व्यास, काय के लिए बैठा, ज्ञान धन की प्राप्ति के लिए और प्राप्ति कराने के लिए बैठा बैठा ना। तो ये संस्कार उसमें कहां से आए, कहां से आए, भगवान ने सुप्रीम सोल गॉड फादर ने सृष्टि पर आकर के जब नई दुनिया की रिहर्सल कराई थी, क्या पुरानी दुनिया की भी रिहर्सल कराई थी, होल ड्रामा की रिहर्सल, ह्यूज ड्रामा की कराई थी संगम युग में, कब, कलयुग के अंत और सत्युग के आदि में। तो वो ही आत्मा व्यास वाले, उसने सबसे जास्ती ज्ञान दल ईश्वर से शिव से ग्रहण किया था। तो वो ही संस्कार उसके भक्ति मार्ग में, जब शास्त्र लिखते हैं ऋषि मुनि तो वो ऋषि मुनि नंबर वार होते हैं। अब ये बात अलग है कि अलग अलग नाम दे दिए हैं लोग मुझे हुए हैं कि ऊंचे ते ऊंचे कौन है। तो बताया कि सबसे बड़ी धन संपत्ति है ज्ञान की धन संपत्ति, और उस ज्ञान की धन संपत्ति को ग्रहण करने वाला जो सागर है चैतन्य, अरे इसी दुनिया की मिसालें हैं ना, सूरज चांद सितारे समंदर नदियां, ये मिसालें हैं, वो जड़ मिसाल है। उन जड़ मिसालों को भगवान आकर के समझाता है कि तुम चैतन्य ज्ञान नदियां हो, तुम चैतन्य सितारे हो, तुम चैतन्य पहाड़ हो। क्या कहा, कोई छोटा पहाड़ कोई बड़ा पहाड़, कोई ऊंचा कोई नीचा। तो समंदर जो है वो पुराने के पुराना समंदर का नाम बताओ, बहुत बड़ा दिखाया जाता है और बहुत गहरा भी होगा है, गहरा भी होगा बड़ा भी होगा, और क्या होगा, और सारी दुनिया का है, सारी दुनिया में उसका प्रभाव जास्ती होगा या कम होगा, जास्ती होगा, अंदर से शांत रहता होगा या बाहर से अशांत रहता होगा। शांत अंदर से होगा या बाहर से? बाहर से ऊंची ऊंची लहरें मारेगा। जोर से तूफान आते हैं तो समंदर ऊपर दाड़ मारता है ऊंची ऊंची लहरों की। है नदियां है ना, सारी नदियां बंगाल में जाके इकट्ठी होकर के सागर से लड़ाई लड़ती है, है? इधर से नदियों का पानी ढेर सारा जाता है, उधर से सागर लहर मारता है, ऊंची दीवार खड़ी हो जाती है। क्या विघन की ऊंची दीवार खड़ी हो जाती है, लोग समझ नहीं पाते कि वो ज्ञान सागर सच्चा है या ये नदियां सच्ची है। आखरे टकराते टकराते कौन हार जाता है? वो नदियां हार जाती, गंगा यमुना सरस्वती ब्रह्मपुत्रा जो सारी मिलकर के एक होकर के टक्कर मारती। ब्रह्मपुत्रा सबसे बड़ी नदी और ऊंची ऊंची स्टेज में बहती है। क्या सबसे ज्यादा पानी किसमें होता है? जल। ब्रह्मपुत्रा नदी में बहुत जल है, ज्यादा समय रहता है, तो उसको अहंकार आएगा कि नहीं है? मैं ब्रह्मा की डायरेक्ट बड़ी पुत्री हूं, अहंकार आएगा तो कहीं हाँ भगवान भी आ जाए उसको भी मेरा सहारा लेना पड़ेगा, आएगा कि नहीं? हाँ। तो देखो ऐसे है, जो बड़ा सागर है प्रशांत महासागर, वो अंदर से तो सदा शांत रहता है। क्या सदा का मतलब कौन हुआ प्रशांत महासागर? इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कौन सी आत्मा है जिसका शास्त्रों में भी नाम है, दूसरे धर्मों में भी नाम है? आदम, आदिदेव, आदिनाथ। हाँ, वो आत्मा है प्रशांत महासागर। जब शिव बाप उसमें प्रवेश करते हैं तो आदि से लेकर के अंत तक ऐसा पाठ बजाती है कि लोग समझते हैं ये बड़ा क्रोधी है। क्या ये तो डांट मारते है, ये तो बड़ा दुख देते है। अरे भाई, जब नदियों के समझाने से पार नहीं समझेंगे, ज्ञान की नदियां होती है ना, हम उनको तो दो कौड़ी का समझते हैं, अपने सामने को समझते ही नहीं, उनको पढ़ाई पढ़ाते रहते, ऐसे करो वैसे करो, ये मकान चेंज कर दो, खाली कर दो, नहीं तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा या नहीं, ऐसे समझाते हैं। हाँ, ऐसे ऐसे अपने अपना धंधा करने वाले लोग हैं, कोई वो मोबाइल का धंधा बहुत करते हैं, सुबह से शाम तक रात भर करते हैं, ऐसे भी होते हैं। कोई वकालत का धंधा करते हैं तो उनको अहंकार होता है, कोई इंजीनियरिंग का धंधा करते हैं तो उनका अहंकार रहते हैं ना, तो वो बड़ा तड़ी मारते हैं बहनों के ऊपर, ज्ञान की नदियां है ना, बड़ी तड़ी मारते हैं, उनकी हाय हाय कर देते हैं, रुलाए देते हैं। तो वास्तव में वो एक आत्मा है, वो ऐसी आत्मा है जो वास्तव में उसका बच्चा जानते हो कौन है? जो सारी दुनिया के लोगों को, सब मनुष्य आत्माओं को बहुत प्यारा लगता है। कौन है? चंद्रमा। वो ज्ञान चंद्रमा है, वो भी जैसे सितारे ज्ञान के सितारे, समंदर ज्ञान का सितारा, नदियां ज्ञान की सितारी, और पहाड़ भी ज्ञान के है, उसको कहते हैं हिमवान पहाड़, हिमालय पहाड़, शास्त्रों में हिमवान राजा का नाम आया ना, तो ये पर्सनिफिकेशन किया है किन्होंने? कवियों ने, जो शास्त्र लिखे ना, कविता में लिखे ना, तो उन कवियों ने पर्सनिफिकेशन किया है। उस पर्सनिफिकेशन को ये जो विदेशी विद्वान आए और उन्होंने भारत के विद्वानों से भी जास्ती शास्त्रों का अध्ययन किया और नई नई सच्ची बातें निकाली, अंधश्रद्धा की नहीं, बहुत कुछ दिमाग लगाया, लेकिन वो भी अंधश्रद्धा के प्रभाव में आ गए, सही बात नहीं निकाल सके। तो इसलिए ये गायन है संसार, कह समझे कवि और कह समझे रवि, जिन शास्त्रों को जिस कविताकार ने लिखा है, सबसे जास्ती बड़ा कविताकार शास्त्रकार वो व्यास वाली आत्मा ही संसार को सही रास्ता दिखा सकती है। और वो भी तो प्रशांत महासागर हुआ ना, अगर मिसाल देंगे तो, है ना। लेकिन ये प्रशांत महासागर कहो, हिमालय पहाड़ कहो, बड़े से बड़ी कोई दुनिया की नदी कहो, मिसिसिपी, अमेजन वगैरह कोई भी नील नदी हो, है ना, या गंगा नदी हो, ये भी तो सब पर्सोनिफिकेशन है ना, कोई पर्सन के नाम है ना, व्यक्ति के नाम है, तो वो सब भोगी हैं या सदा योगी है, है? जब धर्म पिता आते हैं दूसरे दूसरे धर्म के, तो जो देवता है या भोक्ता थे, है? भोक्ता का मतलब कर्मेंद्रियों से भोग नहीं भोगते थे, जिन कर्मेंद्रियों से दुख दिया जाता है, ज्ञान इंद्रियों का भोग भोगते थे, तो भोगी कहेंगे नहीं। राक्षसों के मुकाबले कोई हिंसा करने वाले नहीं थे। तो वो जो प्रशांत महासागर की बात हो रही थी, वो एक ऐसी आत्मा है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो सबसे जास्ती ज्ञान जल धारण करती है, ईश्वरीय का, ईश्वर का ज्ञान जल, और जो सारी दुनिया जिसको पसंद करती है, वो कौन सा ग्रह है, ग्रह है, उपग्रह है, नक्षत्र कौन सा है दुनिया में, जब दिल्ली में गर्मी का मौसम होता है ना, चिलचिलाती हुई गर्मी मई की जून में, मई जून मई में, हाँ, तो उसमें दोपहर में 12 बजे से लेकर के 3-4 बजे तक कोई सूर्य की धूप में ठहरेगा, अच्छा तो पसंद करता है, पसंद करता है, है? अच्छा, जब ओजोन किरण फटती है तो आया, जब वो लगता है क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण पड़ता है, पूरा सूर्य ढक जाता है ना, है? तो उस समय सूर्य को कोई देखेगा, देखेगा, देख पूरा सूर्य, या कुछ शीशा ईसा बीच में डालेगा तो फिर डायरेक्ट देखेगा, बहुत प्यारा है ना, डायरेक्ट ले लो नजदीक, डायरेक्ट कनेक्शन करो ना, वो तो वो बताओ ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र जिसको सारी दुनिया पसंद, चंद्रमा, तो सारी दुनिया जिसे पसंद करती है उसे फिर वो ज्ञान सागर है, जो पृथ्वी का बड़े से बड़ा पावरफुल चीज है, हा? वो भी पसंद करेगा कि नहीं, है? नहीं करेगा, करेगा, तो वो जब महाविनाश होता है, है? सारे ग्रह उपग्रह आपस में टकराते हैं, एटम बमों की मार से बिगड़ता है ना बैलेंस, तो वो बच्चा जो है ना बाप का, जो सबसे नजदीक है, है, सारी दुनिया को सुख देता है, दुख नहीं देता, सहन करता है कि नहीं, है? ये संस्कार उसने कहां डाले होंगे, संगम युग में ही डाले होंगे ना, शूटिंग पीरियड में, तो वो आत्मा जो प्रैक्टिकल में ज्यादा सहन करने वाली साबित हो जाती है, है? वो आत्मा उस बच्चे को सुप्रीम सोल जिसमें प्रवेश करता है उसको सर के ऊपर धारण कर लेती है, क्या शिव बाप कहते हैं बच्चे, आई एम योर मोस्ट ऑबीडिएंट सर्वेंट, ऐसे ही जिसमें प्रवेश करता है वो कहते हैं बच्चे, आई एम योर मोस्ट ऑबीडिएंट सर्वेंट, कहता है? नहीं, क्यों नहीं कहता, अरे बाप को फॉलो नहीं करेगा, बाप को फॉलो नहीं करना चाहिए, हाँ, बच्चा वो जो शिव बाप ब्रह्मा के मुख से कहते हैं वेदवाणी में, जो अपनी बात माने सो बच्चा, और न माने अपनी पढ़ाई पढ़ाए, नहीं ये बात झूठ, ऐसे ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, तो चच्चा के बच्चा क्या कहेंगे, चच्चा,
होता है ना।
तो ब्रह्मा की सोल दादा लेखराज ज्ञान चंद्रमा जो है, जो सारी दुनिया को बड़ा पसंद है, बचपन से लेकर के और अंत तक। कब ज्यादा पसंद, कब ज्यादा पसंद नहीं, जब पूरी रोशनी होती है तो सब उसे देखना पसंद करते हैं। यहां तक के जो मुसलमान हैं, क्या उनमें ये संस्कार कहां से आ गया कि वो छोटी रोशनी वाला चंद्रमा होता है उसको बड़ा प्यार देते हैं, बड़ा महत्व देते हैं, बड़ा धूमधाम मचाते हैं खुशी होकर के। क्यों? ये संस्कार उनमें कहां से आए? अंधेरे को पसंद करते हैं। अधूरा चंद्रमा समय अरूरा चंद्रमा के समय उनका राजा ही चलती है। अरे वो भी संस्कार कहां से डाले? उस अधूरे चंद्रमा से ज्यादा प्यार कौन करता है द्वैतवादी द्वापर युग में? विधर्मी तो ढेर सारे हैं, अधूरी बात बताते। इस्लामी क्यों करते हैं? क्योंकि संगम युग में उन इस्लाम धर्म की आत्माओं में से कोई आत्मा होगी जो उस आत्मा को बहुत प्रेफरेंस देती है, बहुत प्यार करती है। कोई कहेगा कौन? अच्छा, माने ओम राधे मम्मा ज्यादा प्यार नहीं करती थी, वो जास्ती प्यार करती है। ओम राधे मम्मा ज्यादा प्यार करती थी, और ब्रह्मा बाबा ओम राधे को जास्ती प्यार करते थे या नहीं करते थे? करते थे। और ब्रह्मा बाबा ने वो से इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली को भी किया है ना। उसका कारण ये था कि पुरुष तो सब दुर्योधन दुशासन, उन्हें तो कुछ न कुछ चाहिए, तो यही हुआ कि द्विधर्मियों में द्वैतवादी जो दो दो पार्ट बजाने वाली दो दो आत्माएं, दो दो बातें करने वाली आत्माएं होती हैं इस दुनिया में, दूसरे दूसरे धर्म वाले, तो उनमें वो आत्मा जो है वो ब्रह्मा बाबा को गद्दी को प्यार करती थी कि ब्रह्मा बाबा को प्यार करती थी? गद्दी को प्यार करती थी। और मम्मा ओम राजे, उनकी गद्दी के ऊपर उनकी नजर नहीं थी, उनकी नजर आत्मा के ऊपर थी। तो आत्मा को जो प्यार करेगा तो वो ऊंची बात, ऊंची बात हुई ना, तो वो आत्मा स्वर्ग से ही ऊंची स्टेज पकड़ती है, साथी बनती है, जीवन साथी पहले जन्म। और जो लीक पकड़ती है, लीक माने ज्ञान, तो ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान मिला ना, उस ज्ञान को सबसे पहले विधर्मियों के बीच में अगर कोई पकड़ने वाली आधार मूर्त आत्मा है, जड़ है, तो कौन है? वही आत्मा जिसको नाम दिया है शास्त्रों में रोहिणी चंद्रमा। किसको ज्यादा प्यार करता है? रोहिणी को ज्यादा प्यार करता है। तो दिखाया, ये बात सारी यहां की है। संगम युग में जब भगवान बाप आते हैं तो जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं उसके द्वारा ज्ञान का भंडार संसार को मिलता है। उस ज्ञान के भंडार को आधार मूर्त जड़ रूप आत्माओं में सबसे पहले वो आत्मा पकड़ती है। कौन सा? जो सतयुग में ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की आत्मा सोलह कला संपूर्ण बनती है और उसका बच्चा जो पैदा होता है कम गला वाला होगा ना, हाँ, तो वो ज्यादा नजदीक हुआ। तो थोड़ी सी भी लीक है तो वो खुश हो जाती, क्या नहीं तो क्या होता है, जब ज्ञान सूर्य सृष्टि पर प्रत्यक्ष होता है ना, तो ये आत्माएं जो हैं आसुरी प्रकृति की आत्माएं, ये परेशान होती है या आनंद करती है, है? परेशान होती है। तो कौन आनंद करती है? आनंद वो करती है जो सुप्रीम सोल बाप के डायरेक्ट सन्मुख बैठ करके पढ़ाई पढ़ने वाले होते हैं। उनमें भी दो तरह के, एक शरीर से तो सामने बैठते हैं और मन के अंदर अंदर झगड़ा चलता रहता है, क्या ढेर सारी संकल्प चलते रहते हैं, इसको सुनाएंगे उसको सुनाएंगे और वो क्या नाम ज्ञानी फैलाएंगे। तो ऐसी आत्माएं जो है वो सन्मुख बैठी हुई है या दूर है? दूर हो गई। तो वो दूर वाली आत्माएं जो है उनका नंबर बाद में, पहले जो दोनों प्रकार से सन्मुख है, अंदर से भी सन्मुख और बाहर से भी सन्मुख, वो है बाप के बीज रूप रुद्राक्ष के मण के। क्या क्या है? अक्ष माने आंख, रुद्र माने शिव, एक होता है शिव रुद्र और एक होता है महारुद्र। लगा? रुद्र छोटा है और महारुद्र बड़ा। तो महारुद्र तब कहेंगे जब रुद्र के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा महारुद्र के साथ 100% मिलकर के एक हो जाए, तब क्या कहेंगे? महारुद्र। तो ये हुआ कि वो जो प्रशांत महासागर है उसका बच्चा हुआ चंद्रमा, और जब विनाश है विनाश होता है तो उस महाविनाश के टाइम पर सारे ग्रह उपग्रह आपस में टकराते हैं। तो वो तो उपग्रह बच्चा है ना, कि ग्रह है उपग्रह है ना, वो तो डर जाएगा ना, वो डर जाता है तो वो अम्मा की गोद में, अम्मा पृथ्वी या सागर, पृथ्वी को माता कहा जाता है, सागर को ज्ञान सागर कहा जाता है, क्या हाँ हाँ। तो वो बाप हुआ सागर, सागर सारी पृथ्वी को गोद में लेके रखता है या नहीं रखता है, है? ऑस्ट्रेलिया भी गोद में है, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया भी गोद में, और बड़े बड़े महाद्वीप अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका भी गोद में। तो पृथ्वी का ज्यादा हिस्सा गोद में किसके है? सागर की गोद में है। कौन से सागर की गोद में? भले बांट दिए हैं सागर तो भी कौन से सागर की गोद में? प्रशांत महासागर, जो अंदर से शांत रहता है और जब देखते हैं कि ये बच्चा ब्रह्मा जो है ना बात को मानता नहीं है, तब क्या करता है? तब विकराल रूप धारण करता है या नहीं करता है? हाँ। तो फिर जब विनाश होता है तो बच्चा तो बच्चा है और अम्मा तो अम्मा है, अम्मा भी बाप से डर जाएगी या नहीं डर जाएगी, हा? कि क्रॉस कर जाएगी नहीं? वो बच्चा जो अम्मा की गोद में आके गिर जा गया गिर जाता है हु? तो अम्मा तो नाम मात्र को भी नहीं रहती सिवाय चोटी के। जब जलवायु होती है तो पृथ्वी का कितना हिस्सा रह जाता है? कौन सा रह जाता है? वो एवरेस्ट चोटी, एवरेस्ट। ईस्ट माने पूर्वीय सभ्यता की चोटी, ऊंचा पार्ट बजाने वाली। तो वो जो पूर्वी सभ्यता का ऊंचे से ऊंचा पार्ट बजाने वाली चोटी है, जहां से सूर्य निकलता है पूर्व से, कौन सा सूर्य? जड़ कि चैतन्य सूर्य? चैतन्य ज्ञान सूर्य शिव सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर। तो वो तो समान बन गया ना, जब लगातार याद करेगा 24 घंटे उसी की याद में रहेगी तो वो तो बाप समान बन गया, और बाप समान बन गया माने महारुद्र बन गया। वो जो विकराल रूप धारण करता है शूटिंग पीरियड में, बार बार शूटिंग होती है, क्या कोई ड्रामा होता है ना, तो ड्रामा की एक बार रिहर्सल की जाती है कि दो चार बार की जाती है। पहली बार रिहर्सल की फेल हो गया, कुछ न कुछ गलती निकली, दूसरी बार रिहर्सल की, तीसरी बार रिहर्सल, चार चार बार करते हैं ना, तो ऐसे ही है। ये जो रिहर्सल होती है उस रिहर्सल में वो सुप्रीम सोल और जिसमें प्रवेश करता है वो सुपरमेसी का हीरो पार्टधारी सच्ची रूपी रंगमंच का दोनों मिलकर के फिर विकराल रूप धारण करते हैं। हर शूटिंग के टाइम पर अंत में और परिवर्तन होना शुरू होता है कि नहीं, हाँ तब फिर परिवर्तन हो जाता है। अरे भाई सुधरना है तो पहले से ही आराम आराम सुधर जाओ, हट पकड़ गए तो क्या करते हैं, तो बाप क्या करेगा, बच्चा कभी हट करता है ना, तो शास्त्रों में लिखा हुआ है पंच वर्षाने लाड़ंते दस वर्षाने ताड़ंते, 15 साल का हो गया ना है, किशोरावस्था खत्म हो रही, होने को आई कि नहीं, किशोरावस्था खत्म आई, क्या आई, नौजवान बनने लगा, तो मन बुद्धि भी परिपक्व होने लगी कि नहीं, तो फिर लाड़ते ही चलना चाहिए ना, है? थोड़ी बहुत पिटाई टाई कर दो उससे काम चलेगा, है? नहीं चलेगा, छोड़ दो मरो, जैसे धर्म पिताओं की आत्माओं को छोड़ देता है। शुरुआत में प्यार से ही पढ़ाई पढ़ाता है, बाद में फिर दुनिया तो क्या करेगी, दुनिया में कौन सी ऊर्जा सबसे बड़ी है, है? दुनिया में, इस दुनिया में सौर ऊर्जा की बात मत करो, सौर ऊर्जा तो वो सूर्य की ऊर्जा है, वो तो दुनिया ही अलग है सूर्य की, इस दुनिया में सबसे बड़ी ऊर्जा कौन सी है जो काम में आती रही, आ रही है अभी भी, अरे डीजल क्या है, क्या लिखा, बड़ा लंबा चौड़ा लिखते चले जा रहे, पवित्रता, अरे हम स्थूल बात पूछ रहे हैं, स्थूल दुनिया में इस पृथ्वी में सबसे ऊंची ऊर्जा कौन सी है, पृथ्वी भी अंदर से निकलती है ऊर्जा, स्थूल धन पृथ्वी के अंदर से निकलता है, तेल, क्या तेल आता है ना, डीजल बनता है, डीजल कहते हैं उसको, डीजल कहते हैं, अनरिफाइंड कहते हैं, है? और क्या क्या उससे गैस भी निकलती है, वो भी ऊर्जा बन जाती है, हा? कच्चा तेल निकलता है, तो वो सबसे बड़ी ऊर्जा किसके पास होती है, अरबियन से इस्लामियों के पास ढेर सारी ऊर्जा, तो मिट्टी के तेल की ऊर्जा हुई ना, है वो तो दुनियावी ऊर्जा है, क्या भगवान ने आकर के इस सृष्टि पर जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ऊर्जावान आत्माएं तैयार की थी उनमें देवान की ऊर्जा थी कि आत्माभिमान की ऊर्जा थी, आत्माभिमान की ऊर्जा है ना, और द्वैतवादी द्वापर युग आता है तो फिर देवान की ऊर्जा शुरू होती है इस्लामियों वाली। तो आज की दुनिया में अभी भी है सौर ऊर्जा तो कठिनाई से तैयार होती है, मेहनत ज्यादा है, लेकिन जिनको स्वतः ही मिलती है धरणी से, किससे, धरणी से मिलती है, धरणी देहाभिमानी कि आत्माभिमानी, धरणी देहाभिमानी से ऑटोमेटिक उनको ऊर्जा मिल गई है, वही तेल कच्चा तेल, तो वो तेल जो जैसे जो लोहा होता है जंग पकड़ जाता है, है? जंग पकड़ता है ना, तो उसको मिट्टी के तेल में डालते हैं कि नहीं, जल्दी से सफा हो जाता है कि नहीं। ऐसे वो सुप्रीम सोल जो है वो भी सृष्टि पर आकर के जब आत्माएं लोहे के समान पत्थर बुद्धि हो जाती हैं, तो उन पत्थर बुद्धि आत्माओं को जो नहीं समझती हैं हट पकड़ लेती हैं, तो फिर उनको क्या करता है, देह अभिमान की मिट्टी के तेल में डाल देता, जाओ गिरो जाके इस्लामियों के बीच में, जाओ गिरो जाकर के किन के बीच में, जिन्होंने कब्जा कर लिया इस्लामियों के तेल के ऊपर, किन्होंने, हाँ क्रिश्चियन। सबसे ज्यादा विकारों की कट किसको लगती है, कौन से धर्म वालों को है? अरे एक अक्षर लिखने में देर लगती है, क्रिश्चियंस को ज्यादा लगती है, ढेर सारी शादियां करते रहते, नहीं नहीं चाहिए उन्हें विकार भोगने के लिए। तो वो भी ऐसा ही हरास्ता पकड़ता है, क्या सुप्रीम सोल, जो ऐसी आत्माएं हैं देवी देवता सनातन धर्म में जो अंतिम प्रजावर्ग की फोर्थ कैटेगरी की आत्मा है, क्या क्रिश्चियन धर्म में जाकर के गिरती है, हा? उन्हों कोई पल्ले डाल देता है, तो फिर वो तो देवता ही सुख भोगने वाली आत्माएं हैं, है कि नहीं, पूर्व जन्म की, तो उनके साथ उनको सुख आएगा कि दुख मिलेगा, है? ज्यादा दुखी हो जाएंगे सुखी हो जाएंगे, ज्यादा दुखी हो जाएंगे। तो ऐसे ही है, सुप्रीम सोल बाप इस सृष्टि पर आते हैं और ब्रह्मा के तन में जो भी नंबर का ब्रह्मा हो उसमें प्रवेश करके पाठ बजाते हैं, तो जो मानते हैं तो मानते हैं, चलते हैं तो चलते हैं, नहीं चलते हैं तो फिर कड़क रास्ता अपना लेते हैं, क्या करते हैं, हाँ देह अभिमानी जो धर्म है उन धर्म को अपनाने वाली आत्माओं के बीच में उनको रहना पड़ता है, और फिर ज्यादा दुखी हो जाते हैं, तो फिर सुधरेंगे या बिगड़ेंगे, सुधर जाते हैं। तो ऐसे ही है वो जो प्रशांत महासागर चैतन्य है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आदम, क्या स्थूल जल या ज्ञान जल, कौन सा भंडार रखता है अपने पास, ज्ञान जल का भंडार, उसका भी यही तरीका है, क्या करता है, पहले प्यार से समझाता है, फिर थोड़ा डरप दिखाता है, नहीं मानते हैं तो छोड़ देता, जाओ भाई, ऐसे ही है। सुप्रीम सोल शिव बाप भी जिस तन में प्रवेश करता है उस तन को सुधारने के लिए क्या करता है, पहले श्रेष्ठ आत्माओं के बीच में उसको साक्षात्कार देता है, साक्षात्कार कराता है, साक्षात आ जाता है, या नीच कोटि की आत्माओं के बीच में आता है, तो समझ में आया, जिन तीन आत्माओं के बीच में आता है वो श्रेष्ठ आत्मा है, उनकी उनकी कदर करना चाहिए, क्या कौन कौन भी आदम को कौन सी दो आत्माओं की विशेष कदर करना चाहिए, अरे परा अपरा तो वो खुद ही है जिसमें प्रवेश करता है, उसमें परा अपरा शक्ति नहीं है, हाँ नहीं है, जिसमें परा अपरा शक्ति बीज रूप स्टेज में है उस आदम को किसकी कदर कर ज्यादा करनी चाहिए, पहले कौन सी दुनिया तैयार करता है, बीज रूप आत्माओं की के आधार मूर्त आत्माओं की के टाल तालियों पत्तों वाली दुनिया है, हाँ पहले जो दुनिया तैयार करता है वो बीज रूप आत्माओं की दुनिया तैयार करता है, उन बीज रूप आत्माओं की दुनिया में कौन सी श्रेष्ठ आत्मा है? कुबेर कैसे? सर्प धारण करता है, सर्प को धारण करता है, आठ को धारण करता है, उसमें कुबेर भी आ जाता है। इसलिए कि वो जो तीन आत्माएं हैं ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर, उसमें एक तो पक्का पुरुष है ना, और दूसरी जो दो आत्माएं हैं ना, ब्रह्मा सो विष्णु बनती हैं, तो वो दोनों पहले तो ब्रह्मा है ना, अम्मा है ना, है ना कि नहीं, और शरीर से भी अम्मा है कि सिर्फ उनकी आत्मा और शरीर दोनों अम्मा है, दोनों बाप है, अम्मा है ना? तो अम्माओं में तो जरूर कुछ न कुछ देवान तो रहेगा। क्या प्रूफ इसका कि देवान है? दोनों में देवान है, एक में तो देवान, इसलिए कहेंगे कि उसका नाम पृथ्वी पड़ गया, उसमें तो सारे ही देश आ गए, सारे ही धर्म आ गए, क्योंकि विधर्मी भी है, विदेशी भी है, इसलिए कहेंगे कि देवान है भाई, विदेशियों में, विदेशियों में देवान होता है, तो उनकी अम्मा में भी होगा जरूर। और एक है भारत की धरणी, है ना, यहाँ पवित्रता का विशेष मान है, तो वो भी धरणी है या नहीं है, देवान है या नहीं है, तो उसका प्रूफ क्या? तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? हाँ? बस 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 बस, हाँ, अभी तक बाप को नहीं पहचान, वो तो कोई ज्ञान देगा तभी पहचानेंगे ना, एडवांस ज्ञान मिलेगा, मिलेगा कि नहीं, तभी पहचानेंगे। अभी एडवांस ज्ञान किसी ने रूबरू आके दिया? अरे ईश्वर जो ज्ञान देता है वो साक्षात सन्मुख वालों को देता है, या जो दूरी दूर रहते हैं वो समझ जाते हैं, है? फिर उसको आने की क्या दरकार, प्रैक्टिकल में आने की क्या दरकार, शरीर में प्रवेश करने की क्या दरकार? भगवान को भी उसको हाँ, भगवान को भी उसका आसरा लेना जरूरी है, ये अहंकार आ जाता है। और सच्ची बात है, क्या बात, सच्ची बात है कि नहीं है? अरे ऊंचते ऊंचे कौन सी आत्मा? भगवान, हाँ, सुप्रीम सोल। तो सुप्रीम सोल जो ऊंचते ऊंचे आत्मा है, उसको भी आधार किसका लेना पड़ता है? सुप्रीम पार्ट बजाने वाला जो हीरो पार्टधारी है, उसका थक गई गया, उसका आधार लेना पड़ता है। तो वो जो त्रिमूर्ति में दूसरी मूर्ति ऊंच कही जाती है, जिसकी पूजा भी होती है विष्णु की, तो वैष्णो देवी का पार्ट बजाने वाली जो आत्मा स्त्री रूप चोलाधारी है, है? तो उसमें ये अहंकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, क्यों? आत्मा में अहंकार नहीं होता है, और देह में तो अहंकार होता ही होता है ना? तो वो आत्मा बनती है कभी? 100% आत्मा योगिनी से पढ़ाई, वो तो सारी दुनिया कोई न कोई से पढ़ाई पढ़ के बनती है। आत्मा जो खुद ही बाप के सन्मुख आकर के पढ़ाई पढ़ लें, ऐसी आत्मा बनती है? नहीं बनती। तो अहंकार नहीं हुई कि नहीं है? और बाप के बच्चे, उन्हें कहीं संदेश मिलता है तो वो दौड़ते हैं कि नहीं है? बाप भी को भी इस बात का फखर रहता है कि दुनिया में है, इतनी बड़ी दुनिया है, इसमें से तुम थोड़े से बच्चे मेरे को पहचानते हो, और तो कोई पहचानते नहीं, क्योंकि मैं तो निराकार हूं, देखने में तो आता नहीं, तो मैं किस तन में प्रवेश करता हूं उस तन के द्वारा तुम मेरे को पहचानते हो। भले थोड़े दिन के लिए पहचाना या ज्यादा दिन के लिए पहचाना, पहचाना तो वो है, तो जो थोड़े दिन के लिए पहचानते हैं वो फिर थोड़े दिन पहचान के फिर तमो प्रधान बनते हैं, जल्दी से नीचे उतर जाते हैं, छोड़ देते हैं, तो फिर दूसरों के संघ के रंग में आएंगे कि नहीं? दूसरे धर्म के ताओं कोई फॉलोअर्स के संघ में आ जाएंगे, आते कि नहीं? आ जाते हैं। अब जो पक्के रहते हैं वो फिर वो ग्रुप बनता है रुद्रमाला बीजों का, जो 12 का पहला ग्रुप है। 12 के 9 ग्रुप है ना, क्या 12 नियम 108, तो 9 ही धर्म है दुनिया में। पीछे गिनाए थे क्या सबसे ऊंची तो ऊंचा? हा कौन सा? पक्का सूर्यवंश। फिर दूसरे नंबर का सूर्यवंश जिसमें 16 कला संपूर्ण देवताएं होते हैं, है सत्यु की पहली पीढ़ी, दो हो गए, फिर 7 और है? तो वो 7 उस दिन भी गिनाए थे, अब आज फिर लिखते बताओ जल्दी जल्दी, एक एक अक्षर लिखो। अरे वो तो बता दिए, उनको बताओ जो 7 और हैं। एक अक्षर लिखो ना, हा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हा 7 गिनाओ। ये तो तुमने कैसे 7 गिना दिए, वो कुछ नहीं, वो उनको क्यों गिनते हो जो देवता बनते हैं पक्के, है भले 13 कला बने या 8 कला बने, बनेंगे तो देवता है। उन द्वैतवादियों को बताओ विधर्मी जो बनते हैं, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 आर्य समाज तक, हाँ ये 7 हैं जो विशेष मनन चिंतनशील आत्माएं नंबरवार हैं, जो ऐसे बीज बनते हैं रुद्रमाला के जो रुद्रमाला में से भाग ही जाते हैं पहले। क्या तो बताओ कोई ग्रुप ऐसा होगा जो भागेगा नहीं? क्या कम से कम एक के कनेक्शन में कुछ न कुछ रहेगा जरूर है। यहां तक के शास्त्रों में लिखा है कि जब हाँ जो चंद्रवंश का बीज है ना, वो बीज जो है उसको तेरे उंगलियों को तो एक ही आधार दुनिया में और कोई आधार, जिनके कछु और आधार नहीं तिनके तुम ही रखवारे हो। क्या औरों को तो आधार शूटिंग पीरियड में भी मिल गए होंगे, देखे होंगे, किसी ने समझाया होगा, अरे ये ऐसी बात नहीं, वो तो ऐसे हैं वैसे हैं, बस उनकी हाँ ये बात हमारी बुद्धि में भी एक बार आई थी लेकिन इतनी पक्की नहीं हुई थी, अब हमें पक्का हो गया, बस हो गए भी दर्द। इसलिए शिव बाप कहते हैं एक से ज्ञान सुनना चाहिए, दूसरे से सुना तो विविचारी ज्ञान हो जाएगा, विविचारी ज्ञान हो जाएगा तो फिर विविचारी धर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यही बात है कि वो ऊंचते ऊंच जो है ना, कौन जो सागर बनता है इस सृष्टि में, किसको किसको आधार लेकर के सागर है? माता पृथ्वी माता धरणी माता का आधार लेता है, वो धरणी माता का आधार लेने वाला, तो जो धरणी है वो 2 प्रकार की अभी बताई, एक भारत माता जो पवित्रता को विशेष महत्व देती है और दूसरी पवित्रता को महत्व उतना नहीं देती, तो वो है जगत अम्बा। क्या नाम पड़ा? सारी जगत में तो शब्द शब्देश आ गए कि नहीं, जगत अम्बा, और एक है भारत माता, उसको जगत नहीं कहेंगे, वो थोड़ी आत्माओं की श्रेष्ठ आत्माओं की माता कि जगत की है, श्रेष्ठ आत्माओं की माता। तो ये दो ही आत्माएं सुप्रीम सोल शिव बाप आते हैं, तो जिस तन में आते हैं उसके दो पहले पहले सन्मुख होते हैं क्या? हाँ, उनमें भी एक जो है, जब दादा लेखराज ब्रह्मा को साक्षात्कार हुए और साक्षात्कारों का उन तीन के बीच में क्लेरिफिकेशन है दिया गया, तीन को दिया गया ना, तो उस क्लेरिफिकेशन को सुन करके वो एक कच्ची आत्मा देह अभिमान वाली वो दादा लेखराज के चिकने चुपड़े चेहरे मोहरे को देख के फिदा हो जाती। देवानी आत्मा देवान को पकड़ेगी कि नहीं? हाँ, बस तो वो तो गई, अब एक बची है, तो जो एक है और उस एक का लौकिक दुनिया का भी कनेक्शन संबंध है दादा लेखराज भगत से, दुनिया का सबसे ऊंचा भगत कौन, किसको कहेंगे, जो साक्षात्कार के आधार पर पक्का कर लेता है और उसे कोई आधार पक्का नहीं मिलता, ज्ञान की कोई बात ही नहीं, बस साक्षात्कार हुआ जैसे मुझे स्वर्ग मिल गया और पक्का मिल गया, कच्चा मिल गया, कैसा मिल गया, पक्का स्वर्ग मिल गया मरते दम तक, ये दिमाग में रहा कि मैं कहां जाऊंगा, स्वर्ग में जाऊंगा अंत मते रुगत। तो जो दो है ना उनमें एक तो गई और जो दूसरी बची तो वो दूसरी का लौकिक कनेक्शन भी गहरा है, है ना? और जो अलौकिक कनेक्शन हुआ ज्ञान सुनाने का उसमें तो वो पहले ही सरेंडर हो गई। कैसे सरेंडर हो गई कि भाई तुम पुरुष दुर्योधन दुशासन हो, कौन है सबसे बड़ा पुरुष दुर्योधन दुशासन इस दुनिया में, कौन सी आत्मा, वो बड़ा बच्चा है शिव बाबा का, बड़े बच्चे का तो नाम जोड़ा जाता है शिव के साथ, शंकर नाम लो, हाँ शंकर कहो, आदम कहो, एडम कहो तो भी तो चलेगा, तो अर्जुन कहो, तो जिसके तन में शिव प्रवेश करता है उस तन का सहयोग देती है? क्यों नहीं देती, क्योंकि तो पहले ही उसको सरेंडर कर दिया, क्योंकि दुर्योधन दुशासन ने डायरेक्शन दिया कि मुझे तो दुर्योधन दुशासन की ही करनी है। उस माता को पसंद नहीं, उसको क्या पसंद है, पवित्रता पसंद है। जब भगवान की बात बुद्धि में बैठ जाती है तो आदमी क्या चाहता है, वो माताएं क्या चाहती है, हम पवित्र रहें या अपवित्र बन जाएं, भगवान के प्रति हमारी बुद्धि जाए यही तो चाहती है। तो वो जो आत्मा है दूसरी जिसे कहते हैं ब्रह्मा से क्या बन जाती, इसी जन्म में इसी शरीर से विष्णु बन जाती। तो वो जो तीसरी है तो वो तो गई, भले डायरेक्ट मां का बन गई, बीज रूप बाप का सामने आने वाला हो गया, आदि में भी गया तो अंत में भी गया, लेकिन जो दूसरी है वो दो तरफा की खींच हो रही, एक वो जो जिसे जगदम्बा कहा, धरणी कहा, है ना, वो पृथ्वी माता गया, वो पृथ्वी माता भी उधर चली गई है, और जो लौकिक संबंध है वो तो दोनों मिलकर के एक हो गए, और उसने पहले ही उसकी सेवा सुश्रूषा करना सुशुभ कर दिया था। किसकी, जिसको घर में पाला कि मैं से बहन बना के रखूंगी, अपनी छोटी बहन, अपनी बच्ची बना के रखूंगी, मैं सेवा करूंगी, है? जैसो बाबा ने डायरेक्शन दिया ना मुरली में, क्या डायरेक्शन दिया, क्या तुम्हारा पति है नहीं मानता है तो तुम कहो तुम तो उसकी शादी कर लो, मैं उसकी सेवा करूंगी, है? सेवा करूंगी, ओबीडिएंट सर्वेंट बन के रहूंगी। तो वो तो संस्कार पड़े हुए हैं पहले से, एक तो ये संस्कार खींच रहे, दूसरे वो बड़े भाई के बड़े भाई के संस्कार खींच रहे, बड़ा भाई बाप समान होता है ना, तो दोनों तरफ से खिंचावट होने के कारण वो भी खींच जाते किसकी तरफ, जगदम्बा की तरफ। तो अब ये तो बचे ठन ठन गोपाल, कौन वही जिसमें आदम में प्रवेश किया शिव ने। तो इधर जब अंदर की बात, क्या माँ बाप के अंदर की बात होती है ना, कोई गंदे बच्चे होते हैं माँ बाप की हर एक्टिविटी को देखते हैं, ये क्या कर रहे हैं, बाथरूम में जाएंगे तो भी देखेंगे ये क्या कर रहे हैं, बाथरूम के दरवाजे पे छुप के सुनेंगे देखेंगे। अरे भाई माँ बाप है तो मैं उनकी जासूसी करने की क्या दरकार है बच्चों को, नहीं वो भाव नहीं है ना माँ बाप का, रिगार्ड नहीं है। इसलिए जैसे विदेशी लोग जासूसी करने में बहुत होशियार होते हैं ना, तो संस्कार उनके अंदर पड़ जाते हैं जन्म जन्मांतर के, वो ये बात हो गई। क्या बात हो गई है, हाँ वो दोनों आत्माएं हाथ से निकल जाती हैं, कौन ब्रह्मा बाबा, वो तो भक्ति में रचे पचे हैं, उन्होंने तो अपना सत्संग वहां शुरू कर दिया, कहां सिंध हैदराबाद में, वो तो पहले से ही शुरू कर दिया था, इनको पहले ही सौंप गए थे, किनको आदम को, जो उनके भागीदार थे ना, बोला ना लौकिक जीवन का भी भागीदार है तो अलौकिक जीवन का भी भागीदार है। हाँ अलौकिक जीवन जो शूटिंग पीरियड में बनता है वहां भी वो ही भागीदार था अलौकिक जीवन का, और फिर अलौकिक जीवन में भी वो ही ज्ञान रत्नों का भागीदार बनता है लेन देन करने वाला। तो वो जो लौकिक संबंध वाला दादा लेखराज ब्रह्मा वाली आत्मा है, वो तो जब अंदर की बात, वो माता जो दूसरी दादा लेखराज की तरफ खिंच गई है ना, उसको संस्कार है जन्म जन्मांतर के, ऐसे क्या अव्वल नंबर माता की तरह या अपोजिट, हाँ तो वो तो उधर खिंच जाती है। तो जो अंदर की बात है, कौन सी मात पिता के बीच की बात, वो जाकर के आउट कर देती है, और वो बात ब्रह्मा बाबा को पसंद आएगी, वो तो भगत है, उनकी बुद्धि में तो ये आता ही नहीं है कि जो शिवलिंग जो पूजा जाता है, बड़े से बड़ा मंदिर ज्यादा से ज्यादा तादाद में भारतवर्ष में है, सार्वभौम सत्ता दिखाई जाती है, वो क्यों पूजा जाता है, उनकी कभी बुद्धि नहीं चलती। और जो ज्ञान की आत्माएं हैं उनकी तो नंबर बार बुद्धि चलेगी ना बच्चों की, ज्ञानी तो आत्मा बच्चे मुझे विशेष प्रिय है, तो उन बच्चों में सबसे लास्ट में समझने वाली आत्मा कौन, जगदम्बा, वो शुरू शुरुआत में नहीं समझती, क्या वो पावर क्या है, माँ बाप की पावर क्या चीज होती है, वो नहीं समझती, और वो बाहर की दुनिया में जाकर के विस्फोट करती है, दादा लेखराज को भी बताती कि ऐसे ऐसे यहाँ ये हो रहा है ओम मंडली में। तो ब्रह्मा बाबा तो पहले से ही समझाते थे किसको, भागीदार को, कि ऐसे ऐसे मत करो नहीं तो तुम पतित हो जाओगे, और वो तो अभी भी उनको क्या है, उनकी बुद्धि में क्या बैठा हुआ है, उनकी बुद्धि में बैठा हुआ है कि योगी पक्का उसे कहा जाता है कि जो कर्मेंद्रियों से साथ रहते हुए भी, संग निभाते हुए भी, बुद्धि से मन से उपराम हो जाए, उसको कहेंगे पक्का योगी। तो ये बात दादा लेखराज की बुद्धि में अभी तक भी नहीं बैठी, इसलिए वो आदि में साथ में थे त्रिमूर्ति में से उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के, तो अंत में भी उसी के संगी साथी बनते हैं या नहीं बनते हैं, बन जाते हैं, वो दोनों आत्माएं तो गई। अब शिव बाप के पास सृष्टि रचने के लिए क्या रह गया, ये बात इसलिए बताया
हाँ
कि जो बच्चे रचे ना उन बच्चों में जो अव्वल नंबर का मणका निकलता है बाप की पावर को धारण करने वाला, बाप के पास कौन सी पावर है? सुप्रीम सोल के पास पावर है प्योरिटी की, लेकिन वो प्योरिटी की पावर वो तो निराकार है, वो तो साकार बनता नहीं। तो जो आत्मा उसकी जो दूसरी पावर है ज्ञान के अलावा, क्योंकि ज्ञान तो निराकार चीज, साकार में क्या चीज? जो साकार शरीर में देखी जा सकती है, समझी जा सकती है, पवित्रता। तो वो साकार पवित्रता को धारण करने वाला जो दूसरा मणका निकलता है कौन है? हाँ, चंद्रवंश का बीज योगिनी। तो बहन हो गई ना, शिव बाप के जो बच्चे बने बीज रूप रुद्राक्ष के मन के, उनमें वो बहन हुई ना, और आईटीएस हुई लेफ्टिस्ट राइटियस ले, तो राइटियस ही रास्ता निभाती है। और राइटियस बहन जो है वो पवित्रता में सबसे आस्ती जा गया। विजय वाला तो बाद में बनेगी, क्यों बनेगी बाद में? ज्ञान लेगी तभी तो विजय माला बनेगी, है कि पहले ही बन जाएगी? हाँ, विजय तभी होगी जब ज्ञान लेगी। तो वो तो बाद की बात होगी। रुद्रमाला में जो पवित्रता की विशेष शक्ति है और जो ज्ञान की भी शक्ति है उसको धारण करने वाला दूसरा मन का, वो दोनों आत्माएं मिलकर के जब मैं किसी में प्रवेश करता हूँ, भले पुरुष तन में भी प्रवेश करता हूँ, वो क्या कहता है? मैं उसका नाम ब्रह्मा देता हूँ। लेकिन पुरुष तन है तो क्या करूं? बच्चों का संगठन, जो ज्ञानी तो आत्मा बच्चे हैं उनका संगठन चलेगा है? चलेगा नहीं चलेगा? उसके लिए तो कन्याएं भी हैं, माताएं भी हैं, कन्याओं माताओं को संभालने वाला तो कन्याएं माता ही होना चाहिए। तो वो जो दूसरा मणका है, जो रुद्रमाला में दूसरा बच्चा बना कहा जाता है, वो बच्चा तैयार होता है ज्ञान को पूरा समझने के वाला, और उसको कहेंगे क्या? बच्ची। क्या कहेंगे? अरे बाप हो गया साकार में आदम, और पहले नंबर की ईव कौन बनती है? जो बच्चे हैं तो वो तो बच्चे हैं, उन्होंने जोड़े ही बनती है कहीं साकार दुनिया में विजयमाला से, चंद्रवंश से बनती है ना। तो वो एक वंश में तो जीवन साथी नहीं बनता है, वो तो ठीक नहीं। तो बताया कि जो जो बच्चे पैदा हुए वो बच्चे मेल के बच्चे हैं या फीमेल के बच्चे हैं? वो रौद्र रूप शुरुआत में कहाँ धारण करता है? शिव जब प्रवेश करता है तो वो तो प्यार का सागर है ना, उसके जो बच्चे हैं, जो भी बच्चे रुद्राक्ष रुद्राक्ष के माला के बच्चे बनते हैं, तो वो बच्चे संस्कारों से आत्मा रूपी बच्चे मेल हैं या फीमेल हैं? मेल है ना। तो जो मेल बच्चे हैं उनमें जो शरीर है वो मेल और फीमेल है या दोनों है या एक ही है? दोनों है। तो कन्याओं माताओं को कंट्रोल करने के लिए वो बच्ची ही निमित्त बनती है। जो यज्ञ के आदि में भी बच्ची थी रुद्रमाला का वो पहला मणका, जो बाप को बाप के रूप में पहचान करके समझ करके उसके अंदर संस्कार हैं जन्म जन्मांतर के। क्या? कैसे संस्कार? कैसे संस्कार हैं? हाँ, ये संस्कार हैं कि भगवान बाप जब आते हैं तो उनके साथ सब संबंध जोड़ने के संस्कार। ऐसे नहीं कि पत्नी ही बनना है। क्या कभी कभी ऐसा होता है ब्राह्मण जीवन में कि पत्नी के रूप में वो बात नहीं बनती है, तो क्या बन जाना चाहिए? आत्मा है, मेल फीमेल दोनों को पार्ट मिल जाती। अच्छा बच्ची बन जाओ, बच्चा बन जाओ, बहन बन जाओ, दूसरे संबंध अपने अंदर है, भाव बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? तो वो आत्मा उसमें एक्सपर्ट है। किस बात में? सब संबंध जोड़ने में एक्सपर्ट आत्मा रुद्रमाला के बच्चों में जो बनती है वो कौन है? योगिनी माता। तो वो योगिनी माता का अंतिम जन्म में भी ये संस्कार आज में रहा है तो अंत में भी रहेगा या नहीं रहेगा? अंत में भी रहता है। तो बाप जो है उस बच्ची को ही वो सारा कन्या माताओं का कारोबार संभालने का सौंपते हैं। जैसे कि दादा लेखराज ब्रह्मा के तन में आए तो किसको सौंपा? ओम राधे, है ना? कुछ गुण देखा तभी सौंपा कि ऐसे ही सौंपा? हाँ, देवताओं में तो गुण होते हैं तो सौंपा, सौंप दिया। तो ऐसे ही वो जो नारी से लक्ष्मी बनती है, वैष्णवी बनती है, उसमें भी वो गुण देखा। कौन? बीज रूप आत्मा में नारी चोला है ना। तो अब कोई वो सारे ही तो सारे पुरुष हैं स्वभाव संस्कार से, तो उनको क्या कहें? सृष्टि चलेगी? नहीं चलेगी। तो इसलिए उस आत्मा को रुद्रमाला के जो बच्चे थे जिन्होंने आज में भी कुछ विशेष रिगार्ड दिया था, वो बच्चे अंत में भी विशेष रिगार्ड दे करके बाप को पहचान लेते हैं, है? और उन पहचानने वालों बच्चों में जो अंत तक साथ निभाने वाले हैं, चलो शरीर तो माता कहा जाता है, प्रकृति अपरा की परा, अपरा प्रकृति, लेकिन मन बुद्धि से वाचा से सहयोग दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? है? दे सकते हैं। तो मन से वचन से सहयोग लेती भी है आज में भी और अंत में भी लेती है। तो कनेक्शन तो है कि नहीं है? तो कनेक्शन है तो टिकी रहेगी ज्ञान में कि नहीं टिकी रहेगी? हाँ टिकी रहती है, लेकिन सारे ही भाग जाए, वो अकेली रह जाए तब क्या करेगी? है? रुद्रमाला के सारे कुछ न कुछ विधर्मी है या नहीं है? कि सारे सूर्यवंशी चंद्रवंशी है? हाँ, जो बारह निकलेंगे ना वो भी तो बाप के बच्चे और बच्चे के भी बच्चे, उनमें भी छोटे कोई बड़े कोई, बारह का ग्रुप है ना, तो नंबर बारह ना। हाँ, तो वो भी एक दूसरे से कानाफूसी करते रहते हैं, एक दूसरे की बात सुनेंगे सुनाएंगे कि नहीं, तो वो प्रभावित होते हैं। माना रुद्रमाला के सारे ही मणके ऐसे हैं जो कनेक्शन बुद्धि का भी टूट जाता है, मन बुद्धि का। एक आत्मा ऐसी है जो मन बुद्धि से कनेक्ट रहती है, कनेक्ट रहने के कारण वो थम जाएगी कि रह जाएगी? थम जाएगी। इसलिए शास्त्रों में दिखाया है कि जब हिरण्याक्ष राक्षस सारी पृथ्वी को लिए जा रहा था पाताल में, राक्षसों की दुनिया में, है ना? राक्षसों की दुनिया जानते हैं, द्वैतवादी, द्वैतवादी राक्षस, द्वैत दैत्यों की दुनिया। तो काशी नगरी बच गई। समझा क्यों बच गई? क्योंकि मन बुद्धि का कनेक्शन जो है ना वो रहता है। शरीर से भले जहां जाएगी जहां रहेगी तो उनको सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा, अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर तो दुनिया तो स्वार्थी है, हैं? वो परवरिश करेगी नहीं करेगी? तो ऐसे ही है वो, दुनिया के जितने भी देहधारी हैं उसे एक आदम को छोड़ करके या सब कोई न कोई का आसरा लेके बैठ जाते हैं। तो रुद्रमाला में भी ऐसे ही है, यज्ञ के आदि में भी सब छोड़ गए, तो एक आत्मा एक तरफ और दूसरी आत्मा एक आत्मा एक तरफ और सारी दुनिया की दूसरी आत्मा दूसरी तरफ। तो जैसे आदि में हुआ वैसे ही संक्षेत्र में भी होता है।
क्या
जो बोला बाप का प्रत्यक्षता वर्ष, तो अब समझ में आया बाप कैसे प्रत्यक्ष होता है सृष्टि रूपी रंगमंच पर ही वो पाठदारी है।
हाँ
ये पहचान है क्या के बाहर की दुनिया, तो बाहर के संबंध देह के संबंध पहले ही छूट जाते हैं, लेकिन जो ब्राह्मणों की दुनिया तैयार होती है शिव बाप के द्वारा, वो ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई साथी नहीं रहता। क्यों क्यों नहीं साथी रहता है? कारण कारण है कि तन से मन से और धन से संबंध से और समय से पूरा अर्पण में कोई होता ही नहीं। और जो होता है, उसका नाम शास्त्रों में लिख दिया बलि।
क्या वो तो बलि कैसी चढ़ाते थे, आग जलाते थे कुंड में और उसमें
झोंकते थे,
नरमेध यज्ञ भी होते थे, जिंदा आदमियों को भी जलाए देते थे।
हाँ ऐसी ऐसी भक्ति मार्ग में चर्याई करियाई चल पड़ी और उसको उन्होंने समझ लिया स्वाहा होना। वास्तव में ये स्वाहा होना नहीं होता है, स्वाहा होना उसे कहेंगे कि सब कुछ खत्म हो जाए, कुछ भी आधार न रहे, न तन का आधार, न धन का आधार और न मन के संकल्पों का आधार। क्या किसका आधार? एक शिव ने जो संकल्प दिया सत संकल्प सच्ची नॉलेज, बस उसी का आधार। तब कौन कहेंगे स्वाहा, बलि चढ़ गया, तो शास्त्रों में उसका नाम हुआ बलि। क्या राक्षस था कि देवता था? क्या था? राक्षस था। राक्षस पत्थर बुद्धि होते हैं कि अच्छी बुद्धि होती है, है? होते तो फिर भी राक्षस, सपोर्ट तो फिर भी राक्षसों को ही करेंगे कि देवताओं को करेंगे। हा? तो राक्षस वही दुर्योधन दुशासन कह दो, तो राक्षस बुद्धि आत्मा जो बलि चढ़ती है तो भगवान भी उससे खुश होता है कि नहीं है? अरे कहते हैं ब्रह्मा राक्षसों को वरदान देता था ना, तो शास्त्रों में ऐसे क्यों नहीं दिखाते हैं कि शिव ने भी राक्षसों को वरदान दिए या विष्णु को वरदान दिए? किसको दिखाते हैं? दिखाते हैं कि शिव ने राक्षसों को भी वरदान दिए तो देवात्माओं को भी वरदान दिए, अच्छा कर्म करने वाली पुण्यात्माओं को भी दिए तो बुरा कर्म करने वाले राक्षसों को भी दिए। क्यों? उसकी बुद्धि में ज्ञान है। क्यों? क्या ज्ञान है? ये ज्ञान है कि ये देवता हैं, जब अपने देवत्व से देना है देना है देना है इससे नीचे उतर जाते हैं, दूसरों का कल्याण बुद्धि में पहले रहे, अपने लिए स्वार्थ बाद में, जो बचेगा खुचेगा तो हम लेंगे, है ना? तो ऐसा दैवी स्वभाव है तब तो देवता है, नहीं तो प्रभावित हो गए, राक्षस हो गए। तो ये सारे देवताएं नंबर वार द्वापर युग से लेकर के आदि से और कलयुग के अंत तक ये सारे रुद्रमाला के मण के सब कन्वर्ट होते रहे। एक ही आत्मा रहती है आखिरी जीवन में जो कल्याण की बात बुद्धि में रखती है। दूसरे धर्म पिताएं भी कल्याणकारी होते हैं जब साथ इस सृष्टि पर आते हैं। विदेशी धर्म पिता ऐसे नहीं कि सात्विक होते हैं तो कल्याणकारी नहीं होते हैं, जैसे गुरु नानक लोग, गुरु नानक तो नए हैं ना, तो उनकी हिस्ट्री सिखों के पास है, तो गुरु नानक के जीवन में ये दिखाया जाता था कि वो धंधा करते थे ना, तो घाटा ही घाटा मारते थे। क्यों क्यों? दूसरों को सस्ता माल बेचेंगे, जितना सस्ता माल कोई दूसरा व्यापारी नहीं बेचेगा। ओम शांति।